क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आपने हमारे सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं दबाया या आप स्पॉटीफाई पे फॉलो नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो यार। सारे मुफ्त के मज़े आप लेके जाते हो, सारे एपिसोड आप देखते हो जीरो से लेके एंड तक, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। भाई ऐसा मत करो बहन, ऐसा मत करो, दे हर दे देम प्लीज़, ऐसा मत करो। सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, हमारे को मिलियन पे लेके जाओ। इतनी बेहतरीन कॉन्वर्सेशन लेके आ रहे हैं, मैं और मेरी टीम दिन रात लगे हैं कि भाई साहब किसी भी तरह से इस देश के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का या तो उत्थान या हंसी मजाक का ठेका हम लें और उनको बढ़िया से बढ़िया कॉन्वर्सेशन दें। तो आप इतना भी नहीं कर सकते? आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ दोस्तों, जाओ अपने बहन भाइयों को, अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, किसी भी तरह का आपको एपिसोड पसंद आया दोस्त कास्ट का, उनको दिखाओ। उन सब के फ़ोनों में जा जा के लाल बटन दबाओ। दोस्तों 1 मिलियन जब तक नहीं होंगे ना, मेरे दिल में कुछ कुछ होता रहेगा और फिर मैं आपसे बोलता रहूँगा। 1 मिलियन कर दोगे मैं चुप हो जाऊँगा, फिर मैं और नई मांग करूँगा, तो चलता रहेगा। पर अभी के लिए 1 मिलियन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि जो आज के मेरे गेस्ट हैं, जिस तरह से मैं शतरंज खेल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, इन्होंने बाबर, जिसको द चेसबोर्ड किंग इन्होंने करार दिया है, उसके ऊपर किताब लिखी है। इनका नाम है आभास मलधैयार। अच्छा, आभास के बारे में एक बात बताता हूँ। पहले ये बहुत बड़े प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट थे अपने कॉलेज के दिनों में, और इनको लगता था कि सारी इंडिक विचारधारा बेकार है। फिर इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया और इन्होंने अजंता एलोरा केव्स में जाके उसकी कुछ साइंस देखी। आज इन्होंने बाबर पर किताब इसलिए लिखी है बिकॉज हम इंडिया में अक्सर बाबर के बारे में जानते हैं तो कम जानते हैं, उसको रॉन्गली मिस एट्रीब्यूट करते हैं एज द लीडर ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसने इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट करा, मंगोल्स का जो एम्पायर स्टार्ट करा। इन्होंने इन क्लेम्स को सरासर गलत ठहराया है। फिर भी डिस्कस सावरकर, फिर हम लोगों ने ना कुछ जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं कि जब भी एक हिंदू अपराइजिंग होती है, जो कि अब हो रही है, तो उससे माइनॉरिटीज़ पर क्या उससे क्या इफेक्ट होता है। मैं हमेशा हमेशा सोचता हूँ कि यार अगर एक हिंदू अपराइजिंग हो रही है तो उसकी उसकी भलाई सब पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल्चरली ना कोई और कम्युनिटीज़ को ऐसा लगे कि हमें दबाया जा रहा है। बट ही मेड सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट द होल इंडिक रेनेसांस दैट वी आर सीइंग इन द कंट्री नाउ। ही इज़ अ रिनाउंड हिस्टोरियन एंड इनकी जो किताब है बाबर की, ये भी दर्शाती है कि बाबर किस कल्चर से आता था और किस कल्चर से फिर उन्होंने आके देश पे रूल करने की कोशिश करी। बाबर के आक्रमण, बाबर की स्ट्रेटजीज, वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन डीप हाउ इंडिया के अंदर एक एक वायरस, एक एक प्लेग आ रहा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर अनसस्पेक्टिंग इंडियंस शिकार बन जाते हैं कम्युनिज्म का, मार्क्सिज्म का, एंड एज अ रिजल्ट दे फॉरगेट दैट दीज इजम्स आर नॉट आर्स इन द फर्स्ट प्लेस। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कई सारे मुद्दे, एनीवेयर फ्रॉम हिंदुत्व टू ग्लोबल हिंदुइज्म टू सावरकर टू द परस्यूट ऑफ हिस्ट्री टू बाबर द मुगल एम्पायर एंड व्हाट इट टेक्स टू विन ओवर लैंड्स, हमने इस सब पे चर्चा करी है। एंड नाउ अलाउ मी द प्लेजर ऑफ स्टार्टिंग द पॉडकास्ट द एपिसोड विद आभास मलधैयार बिगिंस इन 3, 2, 1। मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज था कि रणदीप हुडा अग्री टू डू इट, एंड फ्रेंकली जब से मैं एक पूरी ट्रेड रायता हिंदुत्व, इस पूरी इंडिक इकोसिस्टम को जब से मैंने देखना शुरू करा लास्ट के 3 साल से, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नाम जो सिर्फ मैं इन सर्कल्स में सुनता था, सावरकर 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 सावरकर, उसको नेशनल प्रोमिनेंस मिलने वाली है। तो ये भी एक बड़ी बात है एंड फॉर समवन लाइक रणदीप हुडा टू पिक इट अप, क्योंकि यू ऑल्सो नीड एक कोर्स करेक्शन भी होनी चाहिए एंड नो वन बेटर देन हिम जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आदमी है टू प्ले इट।
यस, क्योंकि व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, जो हम नोट करने की बात है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम की, उस वक्त से 1 महीने पहले तक जय श्री राम को एक फ्रिंज स्लोगन की तरह माना जाता था।
लेकिन हम बचपन में भी यूज़ करते थे जय श्री राम, इट वाजंट पॉलिटिकली चार्ज्ड।
यस, बट ऑफ लेट जिस तरह से उसको पॉलिटिसाइज किया गया, ये दिखाया गया कि इट्स मोर ऑफ अ वार स्लोगन, स्लोगनरिंग एक्सेट्रा, लेकिन यू जस्ट सी कि किस तरह से नैरेटिव बदला, द वे द थिंग्स वे पुट अक्रॉस, यू वुड सी द जय श्री राम का फ्लैग्स बिंग पुट अक्रॉस एवरीवेयर, सो इट बिकेम अ मेन स्ट्रीम टू। सिमिलरली सावरकर का भी, सावरकर की भी हम जब बात करते हैं, तो जो भी जो कांग्रेस का पॉलिटिसाइजेशन था, उसके वजह से सावरकर की बातें बहुत हद तक दब गई। उनके कभी उनके हिंदुत्व के बारे में किसी ने बात नहीं की जैसे उन्होंने बात की थी। हर कोई अपने हिंदुत्व का डेफिनेशन देने लगा कि हिंदुत्व इक्वल टू स्यूडो साइंस, हिंदुत्व का मतलब कास्टिज्म, लेकिन सावरकर तो पूरे एंटी कास्ट थे, ही वॉज कम्प्लीटली एंटी ऑफ इट. एंड और इनफैक्ट उस समय के सो कॉल्ड ट्रेडिशनलिस्ट लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी अटैक किया था इस विचार को लेकर के. और ऐसे में जब इतना कॉन्टेस्टेड लेगेसी है इस इंसान का, उसके ऊपर बॉलीवुड अगर एक फिल्म बना रहा है, एक मेन स्ट्रीम फिल्म आ रही है, तो इट इज़ नॉट ओनली एक्साइटिंग बट इट इज़ गोना गिव अ लॉट ऑफ रिफ्रेशिंग व्यूज जो पहले नहीं हुआ है मेरे हिसाब से.
पर एक बात बताओ, ऐसे क्या हिंदुओं के पास और ऐसा लिटरेचर नहीं है कि उनको सावरकर को ही रिवाइव करना पड़ता है? मतलब मैं बड़ी अर्नेस्ट जगह से पूछ रहा हूँ, जैसे एकदम पे ऐसा क्यों है कि सावरकर का नाम एक ऐसा नाम है जो मतलब इट इज़ बिकम सिनोनिमस विद हिंदुत्व, कि हमें ये जानना ज़रूरी है. और जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिस्टोरियन हो आपकी तरह, चाहे वो और कोई ऑथर हो, चाहे वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जुड़ा भी ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा सेंटर ऑफ राइट जाती है या फिर उनका इंडिक वर्ल्ड व्यू है, तो सब लोग सावरकर को इतना रिवियर क्यों करते हैं? वॉज ही रियली द गाय हु मेड द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर हिंदुत्व?
नहीं, नॉट, हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने पूरा हिंदुत्व को कॉन्सेप्चुलाइज किया, ही वॉज अ पर्सन बिहाइंड इट, बट उन्होंने एक उसको एक ऐसे फ्रेमवर्क में डाला जो उस समय के कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता था. सो अगर हम इफ़ यू वी ट्रूथफुल अबाउट इट, दैट वॉज अ पीरियड जब पॉलिटिकल इस्लाम बहुत राइज पे था. पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब है जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और उस खिलाफत आंदोलन के वजह से जो मालाबार में जो मोपला जेनोसाइड हुआ था, वेयर हिंदुओं को बड़ी निर्दयता से मारा गया था, और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी दिल दहलाने वाले हैं.
हिंदौल सेन गुप्ता से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने इसी चर्चा की.
यस, तो एक समय सावरकर वो शख्स थे जब उन्होंने 1857 के ऊपर जब किताब लिखी थी, वहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकत्र होकर के एक विदेशी शासक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अपनी आज़ादी के लिए एक उन्होंने लड़ाई लड़ी है जिसको उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बुलाया. लेकिन जब वो पोर्ट ब्लेयर में थे, जब वो जेल में थे काला पानी में, वहाँ पे जिस तरह के सरकमस्टांसेस सामने आए, जिस तरह के मास कन्वर्शन का रैकेट जो वहाँ जेल के अंदर भी चलाया जाता था, जब
काला पानी में मास कन्वर्शन रैकेट्स,
यस रैकेट्स एज इन जो देयर वाज अ होल आइडिया दैट जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट करते थे, कन्वर्शन का प्रोसेस एक तरह से वो चला रहे थे.
पर सारे इब्राहिमिक फेथ्स करते हैं इसमें.
यस, इसमें नया कुछ नहीं था. बट होता ये है कि अब जब आप उस पद्धति से जुड़े हुए नहीं है, जैसे आप अगर हिंदू को बोलेंगे कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई दूसरा एक सिस्टम हो सकता है जो आपके अपोजिट वर्ल्ड व्यू से वर्क करता है, तो पहले एक हिंदू के लिए मानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपने वर्ल्ड व्यू से पूरी दुनिया को देखना चाहता है. जो जितने भी इंडिक फेथ है वो कभी भी इस तरह से नहीं थे कि हम मास कन्वर्शंस करेंगे. इंडिक फेथ हमेशा से,
पर ये लोग एक्सपेंशनिस्ट भी नहीं थे. एक्सपेंशन नहीं करना,
बिल्कुल नहीं. एक्सपेंशनिस्ट तो एक्सपेंशनिज्म हमारा रिलीजन के लिए नहीं था. एक्सपेंशन का मतलब था कि हम एक्सपैंड करेंगे अपने रेल को, जैसे चोलाज ने एक्सपैंड किया था.
वी हैव टेरिटरी बढ़ाएंगे,
टेरिटरीज बढ़ाएंगे,
लोगों की स्पिरिचुअल रियलिटी को नहीं छेड़ेंगे.
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हिंदू आइडियाज़ को देखने का शुरुआत करें तो ये हमेशा से बहुत ही डाइवर्स रहा है. आप ये समझिए कि जब नालंदा का पतन हुआ था, जब बख्तियार खिलजी ने उसको 12वीं शताब्दी के अंत में जला दिया था, उस वक्त वहाँ पे जो पुस्तक जले थे वो सिर्फ बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं थे, और उन पुस्तकों में हिंदू दर्शन शास्त्र भी थे. और वो जो दर्शन शास्त्र थे वो आस्तिक और नास्तिक भी हम उनको डिवाइड करते हैं. और इनफैक्ट नालंदा में एडमिशन के लिए भी आपको आस्तिक स्कूल के बारे में भी जानना होता था. अब जो 6 फिलॉसफी हैं, 6 दर्शन हैं, मीमांसा, न्याय, योगा, ये सब आपको जानना होता था. और 13 सेंचुरी तक इतने डाइवर्स व्यूज़ एक साथ रह रहे हैं. उसके पहले भी जब भी डिबेट्स होते थे तो डिबेट्स में ऐसा नहीं होता था कि मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा या फिर आप आई विल डिस्ट्रॉय यू एंटायरली. डिबेट्स का मतलब ये था कि जो भी शास्त्रार्थ में हार रहा है वो कायदे से जो इंसान जीत गया है उसके फेथ में खुद को अडाप्ट कर लेगा. दैट इज़ हाउ इट वर्क. जैसे शंकराचार्य मंडन मिश्रा की डिबेट के बारे में बहुत चर्चा हुई है, तो वहाँ पे भी ऐसा था कि जो जो विनिंग फिलॉसफी है उसमें जो लूज जो भी लूज़र है उसको अडाप्ट कर लेगा एंड दैट इज़ हाउ दे विल गो अहेड. कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं आपको आपके एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. तो उसी तरह से सावरकर के लिए भी इट वॉज़ अ शॉकर जब भी एक हिंदू के लिए जो अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू उनके सामने आती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शॉक कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है. क्योंकि हम कभी बचपन से उस आइडिया से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अब्राहमिक फेथ है जिस तरह जितने भी बुक्स हैं दे प्रीच इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज द फॉर क्रिश्चियनिटी ऑल्सो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू बिलीवर एंड नॉन बिलीवर. इस्लाम में भी एक वर्ल्ड पूरा मोमिन है और दूसरा काफिर है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. और इसी तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड व्यू को पूरे वर्ल्ड को भी डिवाइड कर रखा है, दरुल इस्लाम और दरुल हरब. इसका मतलब जो एक पूरी जो टेरिटरी जो इस्लाम की है जहाँ पे एक इस्लाम का शासन होगा, और जो टेरिटरी में इस्लाम का शासन नहीं हो दरुल हरब है, मतलब आपको उसको फर्दर दरुल इस्लाम बनाना है. और इसको अम्बेडकर ने भी ऑब्जर्व किया था. लेकिन जैसे एक समय अम्बेडकर भी इनफैक्ट इस्लामिस्ट के साथ मिल करके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ हो गया कि जो इस्लाम का जो ब्रदरहुड है वो ब्रदरहुड एक कॉमन ब्रदरहुड नहीं है, बट इस्लाम का ब्रदरहुड सिर्फ उम्मा का ब्रदरहुड है. इसका मतलब है कि इस्लाम मुस्लिम ही मुस्लिम के लिए खड़ा रहेगा, न कि मुस्लिम बाकी और ह्यूमंस के लिए खड़ा होने वाला है. सो ये उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्रदरहुड था. इसी तरह से जब सावरकर ने भी उस चीज़ को रियलाइज़ किया 1920 के आसपास, तो उनको लगा कि हमको भी इसका जवाब देना चाहिए. फिर उन्होंने बात करनी शुरू की हिंदुत्व के आइडिया के बारे में, जब उन्होंने जेल में पूरी बुकलेट लिखी थी हिंदुत्व की. लेकिन इससे पहले हिंदुत्व एग्जिस्ट करता था. अब जब विजयनगर अम्पायर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट ही था कंप्लीट रिबेलियन अगेंस्ट द मुस्लिम सुप्रीमेसी जो दो भाइयों ने राय ब्रदर्स ने शुरुआत किया था. हरिहरा एंड बुक्का ने उनको एक गुरु से दीक्षा मिली थी और गुरु ने उनको बताया था कि आपको एक अंपायर का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए. और बहुत लोग ये जानकर के सरप्राइज्ड होंगे, ये जो दोनों भाई थे वो स्लेव बना करके मुस्लिम सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में ले जाए गए थे एज अ स्लेव, और उनको कन्वर्ट कर दिया गया था.
कृष्णदेव राय
नहीं, उनसे पहले
जिन्होंने
हरिहरा, तो उनको एज अ स्लेव बना करके ले जाया गया था और उनको एक रिबेल को कर्टेल करने के लिए यहाँ भेजा गया डेक्कन में. लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों में जो मुस्लिम शासन है उसके खिलाफ रेज है, उसके सुप्रीमेसी के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं. तो उससे इंस्पायर हो करके और उनके जो गुरु थे, जो गुरु एज इन जो सेज उनको मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आपको हिंदू आइडियाज़ के लिए काम करना है, तो उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने एक ऐसे एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की विच विल बी एंटीथेसिस ऑफ द मुस्लिम सुप्रीमेसी और मुस्लिम सल्तनत. तो एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट ही हुआ विथ एन आइडिया ऑफ हिंदू सुप्रीमेसी, क्योंकि आप जब मुस्लिम सुप्रीमेसी के ऊपर उठना चाह रहे हैं तो दैट इज़ डेफिनेटली अ हिंदू सुप्रीमेसी. उसके बाद और मैं सुप्रीमेसी वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उस समय के पीरियड को हम अभी के मोरालिटी से नहीं जज कर सकते हैं. उस समय सुप्रीमेसी का मतलब था कि तुम अगर सुप्रीम होने की कोशिश करो तो मैं आपसे सुप्रीम होकर के आपके ऊपर उठने की कोशिश करूंगा. सो दैट्स वे द विजयनगर एम्पायर केम इन टू बींग. उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब आवाज़ उठाई, तो कई लोग ये बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो बड़े सेक्युलर थे क्योंकि
उनके आर्मी में कुछ जनरल्स थे वो मुस्लिम थे.
यस,
तो उसमें नुकसान क्या है?
यस, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं.
पर हो तो ऐसा ही जाता है. हाँ, अक्सर ऐसा ही हो जाता है,
लोग बना भी देते हैं उसको वैसा.
मैं आपसे ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना अब पिछले एक साल से ना मैंने भी बहुत सारे सेंटर ऑफ राइट लोगों से बातचीत कर ली है, ठीक है, खासकर इंडिक वर्ल्ड व्यू वाले. उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आज आपसे दोस्ती हुई है. जैसे मुझे कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा लगता है कि हम इतने सारे डिस्कोर्स में एंगेज करें और यू नो वेन द राइट प्रेजेंट्स फैक्ट्स के स्टेट्स में हमें कई कम्युनल राइट्स के तरह जिक्र नहीं दिखता. ऐसा लगता है कि चीज़ें जनरली ओवरऑल इंडियंस के लिए सेफ हो रही हैं, बट यू नो कल्चर को आप एग्जैक्टली फैक्ट्स में मेजर नहीं कर सकते, तो या आप उसके कोई स्टैट्स नहीं निकाल सकते. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना बड़ा, क्योंकि सूर्य जा रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से वेन वी टॉक अबाउट इस्लाम और वेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम्स वी इनएविटेबली एसोसिएटेड विद ऑल मुस्लिम्स इन द कंट्री। और फिर उसके बाद मैं जब ये मुद्दा उठाता हूँ कि मुझे लगता है कि हम इतनी ये बातचीत कर रहे हैं और हमारा अपना सूरज उग रहा है, तो बेचारे मुसलमानों को इसका नुकसान ना पहुँचे, उनको भी अधिकार है सिटीज़न बन के रहने का, वो कोई अलग नहीं है हमसे, मैं ये सोचता हूँ, तो मुझ पर फिर लोग अटैक करते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, हिंदू ऊपर जाएंगे मुसलमान नीचे होंगे। एंड देन माई सेवरल मुस्लिम फ्रेंड्स दे आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ इवन एंगेजिंग, सम ऑफ देम हैव नो राइट बट टू कम्प्लीटली कन्वर्ट एंड स्टार्ट पीचिंग हिंदुत्वा देन, कि चलो इस बहाने से हिंदुओं के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे और उनके आइडियाज पीच करते रहेंगे हम बच जाएंगे। मेरे को सही में ऐसा लगता है। अब आप बताओ, आप यू आर बियर ऑन दी अदर साइड एज वेल, आपने मार्क्सिज्म एज वी नो इट, आप वो यू आर अ फुल फ्लेज्ड ब्लू ब्लडेड मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट एंड यू कम टू दिस साइड एज वेल, इन द इंडिया दैट वी लिव इन विद हिंदुत्वा को हम जैसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसकी बातचीत कर रहे हैं, क्या इन लोगों पर सही में एक आक्रमण हो रहा है और इन लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपसे ये दिल से पूछता हूँ।
सो जैसे मैंने छत्रपति शिवाजी की बात की थी तो उन्हीं का एग्जांपल देके मैं शुरू करूँगा इसको एक्सप्लेन करना, कि छत्रपति शिवाजी के आर्मी में तो 11 जनरल मुसलमान थे एंड उसके भी कुछ कुछ अलग नुआंस थे, उसको एग्जैक्टली 11 नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस थे। और तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कहना था कि मेरा मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, अगर तुम कुछ उपद्रव मचाओगे। सो बहुत सारे लोग ये जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब मुसलमान शासक जो थे वो अगर मंदिर में गौ हत्या करते थे तो शिवाजी ने मस्जिद में पिक का स्लॉटर शुरू कर दिया था, ही डिड इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका ही इज़ हेटिंग द मुस्लिम्स, उन्होंने क्या बोला कि तुम अगर ये करोगे तो मैं उसका रिस्पांस बिल्कुल उसी पत्थर से दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से। सिमिलरली जो हिंदुत्व का आइडिया सावरकर ने प्रोपगेट किया था और उससे पहले हिंदुत्व की आइडिया एग्जिस्ट कर रही थी, बंकिंग चंद्र ने बात की है हिंदुत्व की,
बिल्कुल बिल्कुल,
या उसके बाद चंद्रनाथ बासु ने भी उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया 1892 में, उन्होंने एक ट्रीटीज लिखी थी, लेकिन उनका जो हिंदुत्व था मोर ऑन अ ट्रेडिशनल लाइन। सो हिंदुत्व को हर लोगों ने एक ऐसे नोशन से समझने की कोशिश किया कि वॉट इट मीन्स टू बी हिंदू, जैसे नारित्व, स्त्रीत्व या फिर मातृत्व, उसी तरह से जब आप त्व शब्द लगाते हैं किसी के साथ इसका अर्थ ये होता है कि आप कैसे, कितने आप उस नेस में डूबे हो, जैसे हिंदू नेस,
समझ गया,
राइट। सो हर किसी ने हिंदुत्व को डिफाइन करने की कोशिश की जब से ये शब्द आने लगा। अब सावरकर ने उस समय के कंटेक्स्ट में हिंदुत्व को डिफाइन किया कि पॉलिटिकल इस्लाम का राइज हो रहा है तो हमको उसका काउंटर बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन्स हो रहे थे, स्लॉटर, हिंदूज वर बीइंग स्लॉटर्ड लाइक एनीथिंग, तो उसका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। इसलिए सुन्नी मूवमेंट भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है बिटवीन शौकत अली जो कि खिलाफत के लीडर थे और सावरकर के बीच में, जब, और इसको विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक में भी बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके पूरा डिस्कशंस को बताया। तो शौकत अली काफ़ी परेशान थे कि सुद्दी मूवमेंट को लेकर के, जो बात उन्होंने सावरकर से कही तो सावरकर ने बोला कि आप कन्वर्जन बंद कीजिए, सुद्दी बंद हो जाएगी। उन्होंने बोला आप कन्वर्जन कैसे बंद हो सकता है, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ। सो अब इस तरह का, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर हिंदुत्व के कैंपेन के अंतर्गत या फिर हिंदुत्व के आइडियाज़ के अंतर्गत अगर किसी को डर लग रहा है या फिर कोई मुसलमान ये बोलता है कि हिंदुत्व के वजह से हम बड़े काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये सवाल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टेक्स्ट बुक आते हैं, जो टेक्स्ट बुक एज इन जो होली बुक है, वहाँ पे जब पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया गया है मोमिन और काफिर के बीच में, कुफ्र और काफिर शब्द अभी भी एग्जिस्ट करता है और आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं उस चीज़ को, और आप आप आज तक उस शब्द को डिनाउंस नहीं कर पाए हैं या फिर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि whether we stand against it or not। और जैसे हिंदुइज़म इज़ नॉट अ रिलीजन जो एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट पे एग्जिस्ट करता है, देयर कैन बी डिफरेंट सेक्ट्स, राइट, किसी हर किसी की दूसरी अलग अलग तरह के दर्शन होंगे, अलग अलग तरह की फिलॉसफीज होंगी, लेकिन इस्लाम में वैसा नहीं है। इस्लाम में एक सेंट्रल टेक्स्ट है जो आपको ये बता रहा है, सो देयर इज़ नो सच डाइवर्सिटी।
नहीं, इस्लाम में भी सुन्नी हैं, शिया हैं, फिर उसके बाद आपके अहमदियाज हैं, आपके इस्माइली हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन हर कोई शरिया में बिलीव करेगा जो सेंट्रल फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। एंड शरिया कहाँ से आ रहा है? शरिया आपके कुरान से आ रहा है या फिर कुरान और हदीस के कॉम्बिनेशन से जो लिटरेचर बनाया गया था कि कैसे आपको ज़िंदगी व्यतीत करनी है। तो इनफैक्ट सूफी भी शरिया को डिनाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप किसी भी सेक्ट को उठा लीजिए, चाहे वो अहमदिया को इनफैक्ट मुस्लिम नहीं मानते हैं सुन्नी मुस्लिम्स, लेकिन अहमदियाज भी कुरान में पूरी तरह से बिलीव करते हैं, अहमदियाज भी शरिया में बिलीव करते हैं, अहमदियाज भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। और इनफैक्ट जो पाकिस्तान मूवमेंट था उसके फोर रनर तो शिया और अहमदिया ही थे।
अच्छा।
यस, जो डॉक्यूमेंट जो 1940 या 42 का जो डॉक्यूमेंट लाहौर रिजोल्यूशन, उसका जो टेक्स्ट तैयार किया था उसको एक अहमदिया ने तैयार किया था। सो अहमदियाज वे द फोर रनर्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। अब मसला ये हो जाता है कि उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे आइडियाज़ को रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि हम इस्लाम को अलग नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने तो वो वही रास्ता पकड़ा दरुल इस्लाम बनाने का, पाकिस्तान को नया मदीना बताते हैं। आज मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अहमदियाज़ का प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या ये उस बात को धुला देगा कि जो पाकिस्तान मूवमेंट के फोर रनर्स थे वो अहमदियाज़ थे? होता ये है कि जब जो भी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी होती है जिसके साथ प्रोसिक्यूशन होता है, एक बहुत ह्यूमन साइक है कि हमारे इमोशंस उनके साथ आ जाते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूमन साइक।
बिल्कुल,
इट इज़ बाउंड टू हैपन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इस बात का क्या एविडेंस रहा है या फिर इस बात का क्या कैसे हम इसको फर्मली कह सकते हैं कि दे विल नॉट सब्सक्राइब टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द इस्लामिज्म। इट्स वेरी टफ। सो इट कैन ओनली हैपन, जैसे अगर हम ये मानते हैं, जैसे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो हिंदूज ने डायरेक्टली बोला कि चलिए सती के डेटा काफ़ी फज किए हुए थे, दे आर वेरी फज, उसमें बहुत एक अलग कहानी है सती की। लेकिन हर हिंदू ये बोलता है कि जो सती प्रथा है वो गलत है, उन्होंने क्लियरली इसको माना। कास्टिज्म के अगेंस्ट मैक्सिमम हिंदूज खड़े रहते हैं, मैक्सिमम 99.9% हिंदूज कास्टिज्म के
एटलीस्ट मुंह पे तो लोगों के सामने बोलते हैं।
बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, इट्स वेरी, जो आप वर्ल्ड व्यू बाहर से दिखा रहे हो
हाँ, उसमें कहते हैं
या, लेकिन वो वर्ल्ड व्यू उधर से नहीं आ पाता है। इनफैक्ट खुद के भी डिस्कोर्स में आपस में जब वो बात करेंगे, अब हमने नुपुर शर्मा का ही केस ले सकते हैं, जब नुपुर शर्मा की ही बात आई थी, जब सर तन से जुदा पूरे स्ट्रीट्स पे हो रहा था, तो कितने लोग आए उस कॉम से और आकर के बोले कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। नुपुर ने तो एक फैक्ट स्टेट किया था, और इसीलिए कोई भी स्कॉलर ने कभी ये नहीं बोल सका कि वो गलत है।
बट एक बात बताओ, उनको पब्लिक लाइफ से बिल्कुल ही विड्रॉ क्यों करना पड़ा? इतना सीवियर हो गया था क्या मामला?
यस बिल्कुल, और इनफैक्ट पुतले जलाए जा रहे थे फिजीज, और फतवे जारी किए गए थे, और यहाँ तक कि आप ये सोचो हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और
पर ये बाहर की कंट्रीज में हो रहा था ना, हमारे देश में
नहीं, हमारे देश में भी हुआ है,
हमारे देश में भी हुआ है,
हमारे देश में भी हुआ है, हमारे देश में बड़े बड़े जुलूस निकले नुपुर शर्मा के खिलाफ और सरतन से जुदा की मांग की गई। सो ये काफ़ी फियरफुल सिचुएशन था। और लेकिन कितने ही बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर स्कॉलर्स, तो इनफैक्ट बहुत से स्कॉलर्स ने तो ये बोला कि जो नुपुर ने बोला वो गलत नहीं बोला, इट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये बात हुई। बट उस पर उतना डिस्कशन नहीं मैं करूँगा, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया कि जो लार्जर जो मुस्लिम सेक्टर है वो आकर के इसके अगेंस्ट नहीं खड़े। क्यों एक फतवा नहीं जारी किया गया उन लोगों के खिलाफ जो ये नारा दे रहे हैं? अगर आप, अगर ब्रदर, ताली तो दो हाथ से बजती है ना, आप ऐसे तो नहीं, अगर आप भारत के मोरालिटी के, अगर आप ये बात करते हैं कि आपका हिंदुज़म तो ये सिखाता है कि सबको साथ लेकर के चलना है, तो फिर अगर आप सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हो और आप ये बोलोगे लेकिन हम तो वो वाला आइडिया अपनाएंगे माई वे और हाई वे, तब तो मिलन तो हो नहीं पाएगा ना
जी।
सो यू विल हैव टू डेबल इन टू दिस हिंदू आइडिया। और हिंदुत्व कुछ और नहीं है बल्कि अपने हिंदू थॉट्स को रियलाइज़ करना है, जैसे हिंदूनेस, इट जस्ट हिंदूनेस,
राइट,
और नॉट रिएक्शन बट रिस्पॉन्डिंग इन द राइट वे एज इन हाउ इट्स नीडेड। यू कैन नॉट बी पुसी फुट दैट वी विल टेक इट वॉट एवर यू विल गिव इट टू अस।
अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे को, बिफोर वी गेट इन टू द बुक बाबर द चेस बोर्ड किंग, ठीक है, जो आपने लिखी है और जिसको भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहा है एज इज ड्यूली डिजर्व्ड, आपने इससे पहले कई इंटरव्यूज के अंदर और अपनी राइटिंग के माध्यम से ये व्यक्त किया है लोगों को कि आप एक फॉर्मर मार्क्सिस्ट हो, ठीक है। अब जब जॉर्डन पीटरसन का प्रचलन हुआ दुनिया में, तो शायद दुनिया के जेंजी लोगों को पता लगा कि कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट क्या होते हैं। उससे पहले ये लार्जली टर्म्स थे, अकेडमिया में थे, और ये अकेडमिया से बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया में और ट्विटर के थ्रू और सोशल नेटवर्क्स में नहीं आए थे। फिर जब जॉर्डन पीटरसन ने बोलना शुरू कर दिया ये अकेडमिया टेंटेड है लेफ्टिस्ट से, मार्क्सिस्ट से, इन सब चीज़ों से, पीपल्स आर एट पेइंग अटेंशन कि कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म क्या है। कार्ल मार्क्स, जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, किताब यहाँ पढ़ी हुई है मैंने, थोड़ी बहुत पढ़ी, एंड हर कोई जानता है क्रिटिकल थिंकिंग में एक एसेंशियल प्रिंसिपल होता है स्टील मैनिंग का। आप तो धज्जिया बना सकते हो मार्क्सिज्म की, क्योंकि आप मार्क्सिस्ट खुद रह चुके हो, तो आप उस आइडिया को समझते हो। बड़े संक्षिप्त, अगर मैं संक्षिप्त नहीं, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपसे पूछूं, एक तो ये कि फंडामेंटली मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म अगर सिमिलर हैं तो कितने सिमिलर हैं, और दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं, और फिर उस विट्रियॉल से आपने अपने आप को मुक्त कैसे किया और आप इस तरफ कैसे आए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यू नो बीइंग सेंटर ऑफ राइट हैज सम अदर मेरिट्स, आई एम सिंपली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अदर पोजीशन, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है इस देश में भी बहुत सारे बड़े अच्छे वेल इंटेंशन लोग मिसगाइडेड मार्क्सिस्ट हैं, मिसगाइडेड कम्युनिस्ट हैं, जिनको मालूम नहीं है। एंड दिस इज समथिंग आई फंडामेंटली बिलीव, आई लव कैपिटलिज्म, इट हैज़ इट्स फ्लॉज, बट इट अलाउज ऑल ऑफ अस टू मेक मनी, फ्री मार्केट है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर ये जरूर हो जाता है कि कुछ लोग जो असहारा है उन पर इतना सपोर्ट नहीं होता, लाइक आई सेड इट हैज़ इट्स फ्लॉज, बट जनरली इट सीम्स टू रिवॉर्ड सोसाइटी इन द लॉन्गर रन, ऐसा मैंने देखा है। मेरी बड़ी रूडमेंट्री अंडरस्टैंडिंग में मैंने पाया कि कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट लोग फंडामेंटली हेट मनी और फंडामेंटली हेट द रिच। नाउ हाउ रॉन्ग और राइट आई एम इन मेकिंग दिस अजम्पशन, एंड लाइक आई आस्क्ड बिफोर, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं और दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं?
सो मार्क्सिस्ट डोंट हेट मनी, दे हेट द रिच पीपल।
अच्छा,
दे लव मनी,
पैसे पसंद हैं।
बिल्कुल, और ये बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उनकी लाइफस्टाइल्स को देखने की शुरुआत करेंगे, लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि वो जो पब्लिक में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
बट कॉलेज लेवल मार्क्सिस्ट तो गरीब ही होते हैं, वो कहाँ पैसे कमाते हैं?
कहाँ से लेवल के?
कॉलेज लेवल के मार्क्सिस्ट जो होते
हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज कॉलेज लेवल के मार्क्सिस्ट को ही मार्क्सिज्म का धुन चढ़ा हुआ रहता है। उन्हीं को लगता है कि हम तो बदलाव ला देंगे, हम वो क्रांतिकारी हैं जो आज तक हुआ नहीं है, शायद मैं ही वो पहला क्रांतिकारी हूँगा जो पूरे देश को बदल देगा, विश्व को बदल देगा। और मार्क्सिज्म का सिंपल मतलब ये है कि आप मार्क्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप मार्क्सिज्म के अंतर्गत आ रहे हैं। और कम्युनिज्म एक वो आइडिया है जो कि मार्क्स के प्रिंसिपल्स को लेकर के आगे बढ़ता है और उसको अडेप्ट करके कंटेक्स्ट के हिसाब से मार्क्सिज्म को रीडिफाइन करता है। जैसे लेनिन ने कुछ बदलाव लाए मार्क्स के आइडिया पे, लेकिन प्रिंसिपल आइडिया मार्क्स के ही थे। उसको बहुत हद तक बदलने की कोशिश की स्टालिन ने, जिसको स्टालिनिज्म के तौर पे भी जानते हैं, स्टालिन थॉट भी बुलाते हैं। उसके बाद माओ ने तो पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। माओ ने जो शुरुआत की थी मार्क्सिज्म की या फिर कम्युनिज्म की चाइना में, इट वाज विथ नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू,
द ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
यस, और वहाँ से उससे भी पहले जो बेसिकली चाइना वाज इन्वॉल्व्ड इनटू द बैटल्स, और चाइना को ऐसा लीडर चाहिए था जो उनको सपोर्ट कर सके उनके मोरालिटी के लिए और उनको लड़ने में मदद करे। और उस वक्त फार्मर्स नेशनलिस्ट थे, क्योंकि फार्मर्स देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। तो माओ ने कुछ 50 लोगों के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने फार्मर्स को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, और फार्मर्स देवर स्टैंडिंग अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म। सो स्टैंडिंग अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म ये की वर्ड है, क्योंकि भारत में भी जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वी वर स्टैंडिंग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, राइट। सो ये नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था। माओ ने शुरुआत की नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद 60s 50s ऑनवर्ड्स उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सपोज करना शुरू किया चाइना के ऊपर। उस समय तक उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सपोज नहीं किया है, एज इन ये नेशनलिस्टिक प्रिंसिपल से चढ़ रहे हैं, इसीलिए वो एक मास लीडर बन सके। कम्युनिज्म कभी मास लीडर नहीं बनाता है, नेशनलिज्म मास लीडर बनाता है, मास लीडर। और इसीलिए माओ ने भी जो तरीका अपनाया था वो था पहले नेशनलिज्म को अपनाने का, और उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिज्म थ्रू द इकोनॉमिक पॉलिसीज उसने इंसर्ट करना शुरू किया।
और कम्युनिज्म में अगर रफली इकोनॉमिक्स बोली जाए तो एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट,
यस,
एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली,
यस,
यही होता है,
यस yes. और इसको बहुत ही लेमैनिश भाषा में अगर समझाया जाए तो वो ऐसा होता है कि अगर दो स्टूडेंट है, दोनों एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने पूरी अपनी पूरे साल के लिए कुछ पढ़ाई नहीं किया, ड्रग वगैरह में पढ़ा रहा, कुछ नहीं किया उसने, और दूसरे स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत की और बाद में रिजल्ट आते हैं, तो ये जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है उसको 90 अंक मिलते हैं और जिसने मेहनत नहीं किया उसको 30 अंक मिलते हैं। सो कम्युनिस्ट बोलेगा कि ऐसा करते हैं, 90 जोड़ के 30 तो 120 होते हैं, तो दोनों को 60-60 दो, ये कम्युनिज्म है,
इक्वालिटी ऑफ आउटकम,
यस,
इसको मशहूर तरीके से बोला जाता है,
बिल्कुल। और इसको इसलिए मैंने बोला ले मैनेज टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ
तो मेरा मेहनत करने का, जो कि कैपिटलिज्म के अंदर ये चीज़ है, अगर आप मार्केट को प्ले करोगे और आप डबल मेहनत करोगे,
yes.
आप चीज़ों को सस्ता कर दोगे, आप ज़्यादा घंटे लगाओगे,
yeah.
आपके पैसे कमाने के चांस बढ़ जाते हैं,
yeah.
तो ये तो लोगों को बाई डिफॉल्ट रेंडर करता है वीक, काम ही मत करो फिर तो, yes. अगर सब कुछ इक्वल है, ऐसा मैं सोच रहा,
बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी अर्थ को भी बड़ा महत्व दिया गया है, राइट। अब अगर अर्थ नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो एक गृहस्थ का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है टू अर्न द मनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हमारे सिस्टम में कभी भी पैसे कमाने को पाप नहीं माना गया। लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को देखोगे, कम्युनिज्म तो बाद में आया, हर जगह पे सफरिंग एक वर्च्यू थी,
व्हिच इज अ वेरी क्रिश्चियन वर्च्यू बाय द वे,
या एंड बिकॉज इट वाज अ क्रिश्चियन वर्च्यू व्हिच अगेन रिफ्लेक्टेड इनटू इस्लाम एंड इन रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। अगर आप सफर कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ, बट हमारे यहाँ वैसा नहीं था,
हमारे यहाँ पे जो सफरिंग, हमारे यहाँ पे कर्म पे तो लोड दिया गया है कि आप काम करते जाओ,
यस yes.
पर उस पे इज देयर नथिंग अराउंड पेन,
नॉट मच, बिकॉज पेन पे पेन, आपको पेन कभी वर्च्यू नहीं हो सकता है, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है बिकॉज यू आर वीक सो यू फील्ड द पेन विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप कमज़ोर थे इसीलिए आपको दर्द हुआ, ये कोई वर्च्यू नहीं है कि मैं तो इतना असहाय हो करके मैंने ये कर लिया वो कर लिया जो लोग होते हैं।
अच्छा, ये इस तरह का कॉमन विक्टिम मेंटालिटी, ये भी मैंने अक्सर देखा कॉलेज लेवल कम्युनिस्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है,
yes.
कि अपनी,
हाँ,
अपनी सिंपैथी गेन करना, अपने कि अपने कमजोरी एग्जैक्टली डिफाइन करके कि मेरी ये कमजोरी है इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया।
सो कमिंग बैक टू माई सेल्फ, बिकॉज आपने उसके मेरे बारे में पूछा था, तो एंड ये एक्चुअली ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदूज कम्युनिज्म के ट्रैप में बहुत जल्दी आते हैं, एंड जनरली लोग बोलेंगे कि रिलीजियस डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, बट ये मेरा खुद का एनालिसिस है, क्योंकि हिंदुइज्म वेदर फॉर गुड और बैड हैज़ बीन एन ओपन आर्किटेक्चर टू ग्रेट एक्सटेंट। उसमें ये होता है आप ये भी करो तो भी चलेगा, वो भी करो तो भी चलेगा, आप अगर अपनी दादी के साथ बैठ करके पूजा नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, कुछ भी करो, ऑल इज़ फाइन। ऐसा होता है कि मेरे साथ एक समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे सुपरस्टिशन है, हवन का कोई महत्व नहीं है, हम हवन क्यों करें, क्यों उस पत्थर की मूर्ति को आरती दिखाएं, इस तरह के सवाल आने लगे। और उसके साथ साथ जो ऐसा लगता था कि मंदिर में हम जाकर के इतने पैसे डालते हैं, ये पैसे मैं गरीब को दे दूं तो
ज़्यादा
बेहतर रहेगा, तो इस तरह के वर्च्यूज़ आपके अंदर आने लगते हैं, सफरिंग की वर्च्यू। तो पहले आपको ये लगता है कि सब कुछ बहुत मेटलिस्टिक है, क्योंकि आप जब भगवान को आरती दिखा रहे हो तो मेटलिस्टिक नहीं है, इट्स मोर मेटाफिजिकल, इट्स नॉट मेटलिस्टिक एस्पेक्ट। सो मेटलिस्टिक होना एक साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट के लिए एट टाइम्स क्वाइट पॉसिबल होता है, क्योंकि आप हर जगह पे रिजल्ट चाहते हो, हर जगह पे आप एम्पेरिकल एविडेंसेस ढूंढते हो। और जब मैं कॉलेज में इंटर किया, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर में कम्युनिज्म कैसे चल सकता है,
वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट आर्किटेक्चर में आपको हमेशा फ्री फ्लोइंग होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी डिज़ाइंस करोगे दैट हैज़ टू बी टू एक्सप्रेसिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट बहुत प्रीडोमिनेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर दैट वेदर दैट स्ट्रक्चर वुड एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट।
अच्छा, आप हाइपोथेटिकल्स में कर रहे हो,
yes.
आप एक्चुअली कुछ बिल्ड नहीं करते पहले, yes. दो साल।
सो इनफैक्ट आपको इनकरेज किया जाता है कि आप कुछ भी बना दो, किसी के बिल्डिंग में किसी का 50 फीट का कैंटिलीवर, कैंटिलीवर वो स्ट्रक्चर होता है जैसे ये इस फोन से, जैसे ये कुछ हैंग करके ये पेन नजर आ रहा है ऐसे सपोर्ट से, तो दिस इज अ कैंटिलीवर,
समझ गया,
किसी का 50 फीट का कैंटिलीवर, सो स्ट्रक्चरली विच मे नॉट बी पॉसिबल,
हाँ
राइट,
छोटा होगा कैंटिलीवर, 1, 2, 3, 4 फुट का जितना हो सकता है,
वी कैन मतलब नाउ वी कैन अचीव बाय इंजीनियरिंग मार्वल, बट प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता है क्योंकि मनी इज इन्वॉल्व, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं उसमें, सो उसको कर पाना आसान नहीं है, लेकिन आपकी फ्री फ्लोइंग थॉट बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा मेरी रुचि हमेशा से इतिहास में और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रही थी, तो जब आप आर्किटेक्चर के थियरीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इन्फ्लुएंस होगा मॉडर्निज्म से, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ आर्ट मूवमेंट टू,
करेक्ट,
और जब आप आर्ट मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप उसके पॉलिटिक्स में आ जाएंगे क्योंकि रूट तो वहाँ पे है, आप डेरिडा के बारे में पढ़ेंगे, राइट, और जब वहाँ तक आप पहुँचेंगे तो उसके पीछे आप मार्क्सिज्म तक पहुँच जाएंगे ऐसे करते हुए। तो इट वॉज इन माई कॉलेज पीरियड जब मैंने कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी थी, स्टालिन के सारे एसेज पढ़े, और मुझे भारत का इतिहास नहीं पता था, लाइक भारत कितना स्वर्णिम था या भारत में क्या था नहीं पता था, मैंने सिर्फ कुछ पन्ने उठा के पढ़े जो मार्क्सिज्म के बारे में और मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, क्योंकि मार्क्स ने तो यहाँ तक बताया था कि अंग्रेजों के, मार्क्स तो एंटी कैपिटलिज्म है लेकिन वो बोलता है कि अंग्रेजों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जो एशिया के जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, ये मार्क्स कह रहा है। ही वॉज सपोर्टिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ भारत, ही सपोर्टेड इट, और ये पढ़ करके मुझे उस समय लगा कि ये तो सच में हम बड़े बैकवर्ड थे, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं ना कि ब्रिटिश ने हमको रेलवे दे दिया और ये सारी चीज़ें। सो विद द टाइम ये बहुत ही डीपली मेरे अंदर इनगल्फ करता गया और मुझे लगा कि अब तो मैं वो क्रांतिकारी बन जाऊँगा, और वो क्रांतिकारी बनने के साथ साथ आप फिर वो दिखावा करने लगते हो, दैट जो आप सफरिंग की बात कर रहे थे, हमेशा आप ये दिखाओगे कि आपके पहनावे में एक बहुत ही अजीब से पहनावा हो जाएगा आपका, वो झोला छाप हम ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, देयर इज अ सम रीज़न टू इट, आप हमेशा ये खुद को एक बड़े ही पोएटिक मोड में चले जाओगे, आपका लुक एंड फील ऐसा हो जाएगा दैट
दे आर नॉट स्टीरियोटाइप्स, दे आर बेस्ड इन सम ट्रूथ,
यस, और ऐसा होता है क्योंकि आप अपने आप को उस झोला से कनेक्ट करने लगते हो, आप उस कुर्ता
से, हम तो फकीर हैं,
जी हाँ, और लेकिन आई वॉज लकी इनफ दैट वन ट्रिप टू अजंता केव्स चेंज इट ऑल फॉर मी, एंड अभी भी जब मैं उस इवेंट को याद करता हूँ तो आई गेट द गूज बम्प्स इमेजिनिंग जो वहाँ पे हुआ था, एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड।
तो फिर आपने दोबारा से आपने डिसाइड करा कि एक काम करता हूँ, अपने कल्चर को स्टडी करता हूँ, बजाय एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट, एक आइडियोलॉजी जो अब इररिलेवेंट हो गया है, उसके कुछ पन्नों को यूज़ करके अपनी रियलिटी पर सुपर इम्पोज ना करूं और पे इम्पोज ना करूं, एंड लेट्स गो बैक।
हाँ, बिकॉज इट वाज मोर दैट जब मैं अजंता केव्स गया था, तो अजंता केव्स आई एम श्योर बहुत लोगों ने विजिट किया होगा, लेकिन ये कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मुझे नहीं पता। जब अजंता केव के अंदर घुसते हो, किसी केव में आप घुसोगे, यू स्टेप डाउन इन टू द केव, इस तरह से इट्स लाइक अ स्टेप डाउन इन साइड द केव, एक डिच की तरह होता है। तो आई वॉज क्वाइट क्यूरियस क्योंकि किसी केव आर्किटेक्चर में उस तरह का अरेंजमेंट मिलता नहीं है, और अजंता के अंदर
क्या केव्स में यूजली ऊपर की तरफ जाते हैं,
मतलब ऐसे ही जब पत्थर को काट करके बना रहे हो तो अनइवन सा रहेगा,
अच्छा,
और जनरली स्लोप अप रहेगा क्योंकि शुरू में आप मेहनत करके उसको ज़्यादा चीजल करते हो, तोड़ते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है, तो अच्छा, स्लोप अप दिखेगा आपको, राइट, इन जनरल। लेकिन इट वॉज अनयूजल एज एन आर्किटेक्ट, मुझे पता था कि वो अनयूजल है, और अजंता के अंदर तो पेंटिंग्स हैं, और पेंटिंग्स काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, और उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल होता था, ऑर्गेनिक कलर्स यानी ये पेड़ पौधे से जो कलर्स निकलते
हैं, जी जी,
और केव्स के अंदर तो अंधेरा है, आप लाइट कैसे लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, एंड इट्स अराउंड 1500 ईयर्स बैक, और आप आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि आग से जो ऑर्गेनिक कलर्स है
फेड अवे हो जाएंगे,
कार्बन आ जाएगा,
अच्छा,
ऑर्गेनिक कलर्स रिएक्ट तो कार्बन हुआ, सो क्या करते थे, आई वॉज क्यूरियस, सो आई मेट अ प्रोफेसर देशपांडे जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया थ्रू अ मॉडल। होता क्या था कि वो जो गड्ढे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो मॉन्क्स पानी डालते थे, और एक पर्टिकुलर, एंड द अजंता केस फेसेस साउथ, सो एक पर्टिकुलर टाइम पे सन ऐसे रिफ्लेक्ट करता था उस पानी के ऊपर, वहां से वो लाइट जनरेट करते थे, सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं. रिफ्लेक्शन के थ्रू वो लाइट अंदर जनरेट कर रहे थे, एंड दैट इज हाउ दे वर डूइंग पेंटिंग. एंड आई वॉज लाइक वाओ, बिकॉज जिनको मैं अब तक बेवकूफ, सुपरस्टिशियस, इरेलीवेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल पीपल समझता था, देवर ब्रिलियंट माइंड्स, जो मैं आर्किटेक्चर में आज तक अचीव नहीं कर पाया हूँ कि कैसे आई कैन रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हाउ आई कैन जनरेट समथिंग लाइक दैट. लाइक बहुत लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा होगा पेरीस्कोप जो बनाते थे.
जी 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 जी
राइट. सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट दीज गाइज वेर यूजिंग इट प्रैक्टिकली, और वो मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट था, मैंने कुछ पा लिया है. और फिर मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, एंड दैट, और जब आप रिलीजन्स को पढ़ना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली उस समय का इतिहास आपके साथ आने लगता है.
जी.
और फिर मुझे ऐसा लगा कि इंडिक सिविलाइजेशन के बारे में मुझे और जानना चाहिए, और जितना मैं पढ़ता था उतना रिवेलेशंस होता था, वेदर इट वॉज द पास्ट ऑफ आवर साइंस, मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ग्लोरियस है, इट्स अमेजिंगली ग्लोरियस, फिलोसफी एक्सेट्रा. एंड दैट वॉज द रूट बैक फ्रॉम द कम्युनिज्म टू नॉट बींग, और मैं मतलब राइट लेफ्ट में तो उतना नहीं मानता, मैं बस यही मानता हूँ या तो आप मार्क्सिस्ट हो या बाकी हो.
मार्क्सिस्ट है बाकी. आपने अर्लियर अभी डेरिडा की बात करी, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स होती है ना, दे यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम आर्ट, और आर्ट के आसपास आर्टिस्ट सबसे पहले वो करते हैं. और मैं उनको डेनिग्रेट नहीं करना चाहता, बिकॉज उनका लेजिटिमेट एक ज़रूरत होती है सोसाइटी के अंदर. जो सोसाइटी के जो मॉरल स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाते हैं, तो आर्टिस्ट को जाके एंटी एस्टैब्लिशमेंट चीज़ करनी होती है, जिससे कि वो चीज़ टूटे और एक नई किरण आए. ठीक है, वो परफॉर्मेटिवली कुछ ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें जब हम डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो गए हैं, या इस्टैब्लिशमेंट ने एक क्लियर ऑर्डर कर दिया है कि सब लोग इसी तरह का हेयर कट करेंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया में इसी तरह की बात करेंगे. तो आई डोंट थिंक दैट देयर रॉन्ग. द इशू बिगिंस टू हैपन, जो मेरे को लगता है, आई थिंक वी टेक ओल्ड डेड मैन वे टू सीरियसली. हम लोग कोई इंसान जिसके देहांत हो चुका है, और मैं एज अ लेमैन कह रहा हूँ, मैं कोई एज अ एक्सपर्ट नहीं कह रहा, उसने क्या सोचा, उसने क्या लिखा, उसने अपना मूवमेंट करके वो सो गया. अब आपको एक नई गतिविधि चाहिए जुड़ने के लिए, तो आप उस पर और रिसर्च करोगे, री इन्वेंशन करोगे और उसे जुड़ जाओगे. एंड आई थिंक इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, मोस्ट ऑफ दिस पीपल देर नॉट सो मच आर रॉन्ग, देर जस्ट रिफ्लेक्टिंग, रिएक्टिंग टू द टाइम्स दे वर इन, जस्ट लाइक वी आर. इसलिए मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं देखता हूँ कि सारी आर्ट मूवमेंट्स बाई डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ जाती हैं, सारी की सारी ऑलमोस्ट, लाइक यू कैन रेयरली सी. बट आई एम क्यूरियस टू नो कि इन एंशिएंट इंडिया वाज इट इवन पॉसिबल टू हैव अ लेफ्ट और राइट? नो
नॉट नेसेसरली, बिकॉज जैसे अगर हम लेफ्ट राइट की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो इट इमर्जेस इन फ्रांस, राइट, एंटी मोनार्की, प्रो मोनार्की, दैट्स हाउ लेफ्ट एंड राइट इज. अब आप ये देखो, जो वैल्यूज़ के अगेंस्ट उस समय के लेफ्टिस्ट खड़े हो रहे थे, एक्चुअली वो वैल्यू इंडिक सिस्टम में नहीं है. इंडिक सिस्टम इज़ मोर प्रो टू दोज वैल्यूज़ इनिशियली, लाइक जो देर वॉज एक जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड व्यू था. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड व्यू का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ द व्यूज़, रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी व्यू, हर किसी को एक प्रॉपर सम्मान देना, राइट. सो ये भारतीय सिविलाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे जो मैं ये नहीं बोलूँगा वी इम्बाइट फ्रॉम लेफ्ट, बिकॉज ये सिविलाइजेशन तो पहले था देन दिस लेफ्ट राइट का नैरेटिव. सो इट्स वेरी टफ टू डिवाइड इंडिया और इंडिक वैल्यूज इनटू लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि और जो आप ये पॉइंट रेज कर रहे हो कि हमेशा जो इतने फिलोसोफर्स थे कि जो आइडिया मेकर्स थे उस समय के कंटेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करते थे, और ये बहुत सत्य है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी आइडिया मेकर्स होते हैं वो दे डोंट हैव बैड इंटेंशंस. वो उनको लगता है कि बिकॉज आइडिया मेकर्स कुछ इन्वेंट कर रहे होते हैं, आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, आइडियाज कैन बी बिजारेस्ट, राइट. इनफैक्ट जब कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया लेकर के आए, इट हैपेंड इन अ पीरियड व्हेन चर्च वेर वेरी प्रीडोमिनेंट एंड रिलीजन हैड बिकम द ओपियम ऑफ मासेस. और हाउ कैन वी फॉरगेट दैट देयर वाज अ पीरियड जहाँ पे चर्च वाज परसिक्यूटिंग गैलीलियो,
दैट्स ट्रू,
राइट. सो जो सिचुएशन मार्क्स ने देखा, तो ऐसा कई बार होता है कि जब आप कुछ एंटीथेसिस करते हो, when you are going anti-system, it might end up becoming another problematic case.
But later on.
But later
on. Not for you to deal with it at that point.
Yeah. और उसमें एक और जैसे अभी प्रॉब्लम ये हुआ है दैट समहाउ लेफ्ट इटसेल्फ हैज बिकम एन एस्टेब्लिशमेंट. वो अपने आप में एक एस्टेब्लिशमेंट है.
सो स्ट्रेंज नो.
यस. एंड बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू लिसन टू द आइडियाज. अब जैसे सो कॉल्ड राइट में भी इतनी डाइवर्सिटी है. ओपिनियंस वोंट मैच बट पीपल सिट अक्रॉस द टेबल एंड दे डिस्कस. राइट. अभी जब मैं अपनी बुक लिख रहा था जब बाबर की, तो उसमें मैंने लेफ्ट हिस्टोरियंस को एक्सटेंसिवली कोट किया. आई डोंट रिजेक्ट देम, आई डोंट कैंसिल देम, बिकॉज मेरे लिए लेफ्ट और राइट की बात नहीं है. बात यह है कि तथ्य कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. और भारतीय हमेशा तथ्य के साथ ही रहते हैं. अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, एक वेस्टर्न फिलोसफी एथिज्म का.
जी, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध. और yes. हर 13 से 14 साल का रॉक एंड रोल सुनने वाला, बाहर की विचारधारा देखने वाला लड़का उससे ग्रसित हो ही जाता है कभी ना कभी.
बिल्कुल. अब आप ये जानकर के बहुत लोग आश्चर्य होगा कि हमारे पास एक दर्शन था मीमांसा. मीमांसा के दर्शन में ये होता था कि वो रिचुअल्स फॉलो करते थे, वेद के हिसाब से कर्मकांड करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि देवता तो इमेजिनरी है. अब बताओ वो एथीस्ट हैं कि क्या है, क्या करेगा वेस्ट ऐसे लोगों के लिए. सो जो भारतीय परंपरा है या जो भारतीय डाइवर्सिटी है, ये वेस्टर्न बाइनरीज में इसको फिट इन कर ही नहीं सकते. उसी तरह से ये लेफ्ट एंड राइट वेस्ट में इसीलिए इमर्ज हुआ बिकॉज देयर वाज अ मोरल करप्शन ऑफ आइडिया. पीपल वे परसिक्यूटिंग द साइंटिस्ट, पीपल वे परसिक्यूटिंग एनी न्यू आइडिया. लियोनार्डो डा विंची ऑल्सो डिडंट हैड वेरी गुड लाइफ दैट वे.
नहीं, वो तो ठीक था. उसके पेटर्न्स मेडिचीज थे, मौज लेता था तो अपनी उसमें.
नहीं, मतलब जो जितने भी आइडियाज लियोनार्डो डा विंची ने क्रिएट किए थे,
हाँ,
दे वर बिट टू रिवोल्यूशनरी फॉर द
टू मच, टू मच. उसकी नोटबुक्स के अंदर ही जो डिजाइंस और जो वो हैं, वी दे कुड नेवर एग्जीक्यूट देम.
एग्जैक्टली. एंड वी केम टू नो ओनली आफ्टर ही वाज गॉन. सो वी नेवर नो दैट हाउ एग्जैक्टली द सोसाइटी वुड हैव रिएक्टेड अगर उसके पूरे प्लेथोरा ऑफ डिस्कवरी.
ही वांटेड टू बिल्ड हेलीकॉप्टर्स. ही हैड लाइक डिजाइंस फॉर हेलीकॉप्टर्स.
या
हाँ.
सो दीज आर साइंटिफिक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिलोसफिकल आइडियाज जो जनरली ट्रॉबलिंग होते हैं लोगों के, लोगों को प्रॉब्लम मेटलिस्टिक चीज़ों से नहीं होती है, लोगों को प्रॉब्लम मेटाफिजिक्स से होती है या फिर फिलोसफिकल चीज़ों से. सो कभी उसकी फिलोसफी उस तरह से ओपनली होकर के नहीं आई, या फिर अभी तक हमको शायद बिकॉज द पर्सन हु इज थिंकिंग सो मच बियॉन्ड द टाइम, ही वॉज सर्टेनली हैविंग सम वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफीज विच विल नॉट वर्क विद द करेंट कंटेक्स्ट, दैट इज फॉर श्योर.
करेक्ट.
And Marx and all got adapted because we have this problem of, you know, एक बात में हमेशा हम virtue देखते हैं to degrade our own, to say ills about our own culture and tradition. उसमें भी आप virtue देखते हैं. अगर आप हिंदुज़म को criticize कर पा रहे हैं तो आपको लगता है आज तो मैंने कुछ कर दिया है, I have become the next reformer. लेकिन when you look at the other worldviews, any other religions, उनके लिए ऐसा नहीं है. दे विल नॉट क्रिटिसाइज देयर फेथ. जैसे मैंने अभी पहले भी नुपुर शर्मा
नहीं, नहीं, बट दे ऑफन क्रिटिसाइज देयर फेथ. क्रिश्चियंस क्रिटिसाइज देयर फेथ ऑल द टाइम. सो डू इवन मुस्लिम्स. मुस्लिम्स सिट, देयर आर मेनी मुस्लिम्स हु प्रैक्टिस इस्लाम बट ऑल्सो फंडामेंटली टॉक अबाउट द थिंग्स दे फाइंड प्रॉब्लमैटिक विद द रिलीजन.
नो, प्रॉब्लम कम्स व्हेन सी वी आर टॉकिंग इन अ क्लोज्ड डोर, दैट्स फाइन. बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ एक्स मुस्लिम्स, फॉर एग्जांपल. They are bit too critical of Islam, right? And if we look at the few of the researches about the religiosity of the people, West is becoming atheist.
Correct.
Right?
That
Christianity is no more existing that way, right? So most of the people, like, you recognize someone as a Christian only because he's born in a Christian family, right? So you know that he was born, but you don't know that what is his faith system, because there's a tenet in his Christianity. You are only Christian if you believe that Jesus is the son of God. And of course there are other sects like Aryan Christianity which led to the creation of Islam, and I don't want to get into this right now, but again, there are other sects, but predominantly you believe that Jesus was the son of God. That's the central idea. That's why you are Christian, right? Similarly, you are a Muslim because you have submitted to the Allah, right? And when you have submitted to the Allah, then there's a book, right, which commands you, which is the command of the Allah. Because that's how it starts. That how do you define a Muslim as? Like, how are you defining H2O as or water as? There's a certain definition to it.
Correct.
Right? So, of course, there would be someone who was born into that, but may not be subscribing to those ideas. You recognize them as Muslim, but by the virtue of the doctrine, centrally, that person is not.
Hmm.
So, these kind of contradictions exist, but yeah.
अब हम आते हैं आपकी चर्चित किताब के ऊपर, जिसके हम आसपास बहुत देर से पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं. आप फाइनली इस किताब के ऊपर आते हैं. थैंक यू ये सब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए. मेड थिंग्स अ लॉट इजियर फॉर मी. ठीक है, तो मैंने आपको बताया, मैंने छोटा सा सर्वे कंडक्ट करा जानने के लिए कि लोग बाबर के बारे में क्या जानते हैं. मैं आपको अपने में थोड़ी राय देता हूँ बाबर के बारे में. मैं सुनता हूँ खासकर कि जब मोदी की सरकार आई, मैंने बाबर का नाम और सुनना शुरू कर दिया. तो लोग बोलते हैं कि एक बाबर था जिसने देश खराब कर दिया. एक ये सुनते हैं. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे चाय की टपरी की बातों से लेके, फ्रॉम व्हाट आई नो एकेडमिकली. ठीक है, एक इस तरह की विचारधारा है. एक इस तरह की विचारधारा है कि ये जो व्यक्ति थे, ये इंडिया के अंदर फर्स्ट मुगल थे जिन्होंने मुगल एम्पायर सेटअप करा. इतना मैं जानता हूँ, इंडिया में हम टिपिकली कॉमन पार्लेंस में कवरेज देते हैं जेंगिस खान को, हम कवरेज देते हैं औरंगजेब को, अकबर को, शाहजहां को. ठीक है, इन चार पांचों को दे देते हैं. बाबर इज कंसिडर्ड एसेंशियल, बट एज योर बुक ऑलरेडी सेज, सिंस अ मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंट अब्रॉड इन हिज ओन नेशन, फिर जब नेशन खत्म हो गया तो फिर कहीं कभी काबुल जा रहे हैं, फिर दोबारा समरकंद जा रहे हैं, उनका जो इंडिया से रिश्ता है वो कम है. तो पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पर्टिकुलर इतने सारे मुगल हैं, आप किसी के बारे में ले सकते हो? और शायद ऐसा होगा कि आप अगर मेरे ख्याल से औरंगजेब की बुराइयाँ करोगे तो और चर्चित हो जाओगे और आपकी किताबें बिकेंगी, क्योंकि औरंगजेब की बुराई भी एक अच्छा टॉपिक है. वाई चूज बाबर? एंड देन सेकेंड थिंग इज, बाबर के अंदर ये चेस बोर्ड किंग, इसका अर्थ क्या है?
शतरंज का बादशाह.
जी.
सो पहला, एक बाबर के बारे में बिल्कुल लोग बहुत कम जानते हैं और जनरली बायस्ड ओपिनियंस ही आते हैं, एंड बायसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं. इनफैक्ट बायसेस हर तरफ से हाइपर बोल हैं. ना उसने ज़्यादा कुछ किया, ना ज़्यादा कुछ उसने बिगाड़ा. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. अब और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो अपने आप को मुग़ल नहीं मानता था, और उसने जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया उसका नाम मुग़ल एम्पायर नहीं था,
तिमूर एम्पायर था.
यस उसको तैमूरिया बुलाते थे या तिमूरिड गुरखानिया बुलाते थे, क्योंकि वो खुद को तैमूर से रिकग्नाइज करता था, न कि मंगोल से. मुग़ल कुछ नहीं बल्कि एक करप्टेड फॉर्म ऑफ मंगोल है.
जी.
राइट. सो इसकी कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है. आई विल जस्ट गिव अ बिट ऑफ बैकग्राउंड. की सो
सॉरी, एक सेकंड आपकी बात काट रहा हूँ मैं.
या
अगर बाबर ने कुछ किया ही नहीं तो वो इस किताब का विषय कैसे बना?
वो बिल्कुल वो पहले मैं पहले ये बता देता.
ठीक है ठीक है.
तो बाबर, जैसे आपने भी सुना कि जनरली इलेक्शंस ये के टाइम में या फिर पॉलिटिकल ये में, जैसे कई बार बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इस बार इलेक्शन औरंगजेब ही लड़ने वाला है, इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज ही इलेक्शन लड़ेंगे. तो इस तरह के, सो हिस्ट्री इज़ वेरी मच रिलेवेंट दैट वे. और आई एम अ पर्सन बॉर्न इन 1988, और उसके चार साल के बाद बाबरी का किस्सा हुआ था. और ये चार पाँच छः साल का वो एज उम्र होता है जब आपके फॉर्मेशनल ईयर्स होते हैं, जब आप जो सुनते हो इधर उधर से वो आपके दिमाग में रह जाती है.
जी.
और वो कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस आपके लिए बन जाता है. तो उस समय से तकरीबन 2-3 साल तक अखबारों में बाबरी छाया रहता था, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा था और लोग उसके बारे में चर्चा किया करते थे. और जहाँ से मैं आता हूँ हज़ारीबाग, वो काफ़ी रिलीजियसली पोलराइज हो जाता है रामनवमी के समय में. तो आज लोग बड़े बड़े ध्वज देख रहे होंगे हनुमान के वगैरह, लेकिन हमारे हज़ारीबाग में तो जमाने से 50-50 फुट के हनुमान के ध्वज लोग निकालते हैं रामनवमी में. और रामनवमी में लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है किसके ध्वज इतने कितने बड़े रहेंगे, हर ग्रुप्स के ये होते थे. और जब भी रामनवमी आएगा तो जब भी वो एक इलाके से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ पथराव होगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ इंसिडेंट
आम आपके लिए.
वहाँ पे रामनवमी के वक्त ये था, और हमेशा से ये नाम बाबरी, राम जन्मभूमि, ये सब बड़ा सिग्निफिकेंट रहा था. लेकिन जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को ओपन करते हो बाद में, जब पहला आपका टचअप होता है इतिहास के साथ, तो वहाँ पे मुगल एम्पायर का चर्चा होता है, विजयनगर एम्पायर का उतना चर्चा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो मुगल एम्पायर था वो शायद सबसे बड़ा एम्पायर था पूरे भारत के इतिहास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण था, और उसमें अकबर एक बहुत ही महान लगते हैं। लेकिन जो एम्पायर इतना महत्वपूर्ण था उसके जो फाउंडर है वो कितना महत्वपूर्ण होगा
जी,
ये तो सवाल आपके मन में आता है। ये इसके साथ जब मैं कम्युनिस्ट आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका था तो मुझे भी, मैं बिल्कुल ये तय कर चुका था कि मुगलों का कंट्रीब्यूशन, जो कि मुगल नहीं है एक्चुअली, वो मैं बाद में बताऊंगा, सो उनका जो कंट्रीब्यूशन था भारत के लिए बहुत ज़्यादा था, और इनफैक्ट उन्होंने भारत को संभाल के रखा था, उन्होंने भारत को सबसे पहले यूनिफाई किया था, लाइक भारत वॉज
ऐसी एपिसोड थी
ऐसा, मैं इट्स अ वेरी मार्क्सिस्ट थॉट, वो कॉमन मार्क्सिस्ट थॉट है जो आज भी जब लोगों को ये देखते हो कि जब ये बोलते हैं कि अकबर ने या जहांपनाह अकबर ने सबसे पहले पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, या फिर कई लोग तो औरंगजेब को ही बोलते हैं क्योंकि औरंगजेब की टेरिटरी सबसे बड़ी थी, तो आलमगीर औरंगजेब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। तो उसके बाद जब मेरी कॉन्शियसनेस जाग उठी थी और मैं समझ चुका था कि ये सब फैलेसी है, और 5-6 साल पहले टीवी पे एक डिबेट बड़ा फेमस हुआ था कि मुगलों ने भारत को क्या अमीर बनाया, तो उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज आ गए, जावेद अख्तर साहब आ गए, तारिक फतेह आ गए, सब कोई आपस में चर्चा कर रहे हैं, और मी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस गो बैक टू द सोर्सेज, तो एक इंडिया टुडे ने एक इन्फोग्राफिक्स डाली थी कि मुगल काल में भारत का जो GDP शेयर था वो 25% था पूरे विश्व का, तो उन्होंने सोर्स दिया एंगस मेडिसन। तो मैं बोला ठीक है भाई, एंगस मेडिसन खोल के देखते हैं, तो जब मैंने एंगस मेडिसन देखा तो मेरी स्माइल तो और वाइड हो गई, क्योंकि अगर 1500 में भारत का GDP शेयर 24% था तो 1080 में 28% था, उस पर्टिकुलर लिटरेचर के हिसाब से 180 में 32% था, और भारत का GDP शेयर उस लिटरेचर के हिसाब से सबसे पहले चाइना के नीचे गया अकबर के काल में। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल निकल करके आया कि GDP पर कैपिटा, राइट, GDP पर कैपिटा का मतलब होता है लोग कितने
जी,
राइट, जो ग्रोथ था वो प्रिडोमिनेंटली नेगेटिव सिर्फ एक काल में रहा, ब्रिटिश काल में भी उतने लंबे समय के लिए नेगेटिव रहा, एक छोटे से पीरियड के लिए 20 साल के लिए वगैरह नेगेटिव हुआ, बट 1500 से लेकर के 1820 के बीच में भारत की GDP पर कैपिटा ग्रोथ -1 थी, ये वही पीरियड था, और ये वही सोर्स बता रहा है जिसको सोर्स करके यूज़ करके ये लोग बता रहे हैं कि मुगल काल में भारत सबसे समृद्ध हो गया था।
उन्होंने ग्राफ के अंदर लो पॉइंट को लेके कंटेम्प्रेरी लोगों को रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हाई लगता है वो
बिल्कुल। और जब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब बाबर की कहा, और ये था कि बाबर हिंदुस्तानी बन करके रह गया, तो मैंने बाबर नामा को पढ़ना शुरू किया और उस पर,
जो कि उसकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है,
जी हाँ ऑटोबायोग्राफी है, वो डायरी लिखा करते थे और उन्होंने गुड बैड अगली हर कुछ अपने डायरी में इंक्लूड करा है, तो वहाँ से मुझे ऐसे ऐसे चीज़ रेवोल्यूशंस मिले जो मुझे लगा कि ये सामने आने चाहिए, जैसे उन्हें लूट भी मचाई थी, अर्थ ये है कि उन्होंने यहाँ से यहाँ के वॉर स्पॉइल्स ले जा करके उज्बेकिस्तान ले गए, वहाँ पे कितने लोगों को बांट रहे हैं, उन्होंने पूरा उसका अकाउंट दिया है, किसको कितने चीज़ वो दे रहे हैं, किसको कितने सोने, किसको कितनी चांदी, इसका डिटेल बाबर ने दिया है कि कैसे वो लूट करके ले जा रहे हैं यहाँ की संपत्ति। तो वो बाबर ने तो भारत के लिए कुछ किया नहीं उस तरह से, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो इन टर्म्स ऑफ कि उसने यहाँ पे समय ज़्यादा व्यतीत नहीं किया, लेकिन जितना भी समय उसने व्यतीत किया उसमें उसने कुछ दिया नहीं, ले करके ही गया। और तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरे मुगल इतिहास के ऊपर इन सारे तथ्य को जुगाड़ करके प्राइमरी सोर्सेस को यूज़ करके पुस्तकें लिखनी चाहिए, और शुरुआत तो बाबर से ही होनी थी, और बाबर को अगर आप जानेंगे तो आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि उस वो जो अम्पायर थी वो ऐसी क्यों बनी जैसी वो बनी, इसका जवाब को बाबर के बारे में पढ़ करके ही समझ में आएगा। और मैं उस समय तैमूर का बात कर रहा था, तो तैमूर और चंगेज़ खान दो डिफरेंट लीनियज में हैं और उनके एक कॉमन एंसेस्टर हैं तुरमई खान, सो बाय द रेस ये सब लोग मंगोल हैं,
एथनिकली ये सब मंगोल
है। मंगोल हैं, लेकिन तैमूर खुद को मंगोल नहीं मानता था, तैमूर खुद को पर्शियनाइज बताता था, मैं पर्शियन हूँ।
बेसिकली वो उस टाइम पे भी एक एलीट एग्जिस्ट करता होगा।
एग्जैक्टली
क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये डेजर्ट ड्वेलर्स थे, तो अगर क्लासिज्म के हिसाब से ये लोग निचले स्थान पे आएंगे और जो टर्किश एलीट जो एलीट्स थे पर्शियन वाले वो इनसे ऊपर आएंगे एथनिकली या फिर बाय कल्चरली या फाइनेंशियली?
नहीं, इसमें बिग बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मंगोल काल है यानी चंगेज़ खान एंड ऑन, दे आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल। उनकी जो सोसाइटी थी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी।
तो हम इनको बारबेरिक होर्ड्स कैसे बोलते
हैं? हाँ, आई विल कम टू इट। सो बारबेरिक वो इसलिए थे क्योंकि दे किल्ड एवरीबडी विदाउट आस्किंग रिलीजन, दे वर टू सेक्युलर टू किल पीपल। या सो उनका ऐसा होता था कि अगर जैसे चंगेज़ खान विल किल, ही विल नॉट थिंक कि वो किसको मार रहा है। उसने इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि चंगेज़ खान ने मुसलमानों का परसिक्यूशन बहुत किया है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ मुस्लिम। बहुत लोग सोचते हैं कि चंगेज़ खान भी मुस्लिम है, लेकिन सर्टन सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स ने चंगेज़ खान को डिफेंडर ऑफ रिलीजन का टाइटल दिया था, क्योंकि उसने कुछ मुसलमानों को बचाया भी था। अर्थ ये उसका ये होता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए केयर करता था। अब इट डजेंट मैटर दैट विच रिलीजन यू कम फ्रॉम, राइट? तो जब ऐसा है और उनकी जो सोसाइटी है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब पूरी सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। हालांकि वो इस्लाम को दबाते नहीं थे, लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट दो इम्पॉर्टेंट रूल थे कि देयर विल बी नो हलाल स्लॉटर, हलाल इज बैंड, एंड देयर विल बी नो शरिया, यू विल फॉलो द मंगोल।
सो नो शरिया लॉ एट ऑल,
नो शरिया लॉ एट ऑल।
और जबकि उस टाइम पे वर्ल्ड में शरिया एग्जिस्ट कर रहा था इन अदर प्लेसेस।
यस,
इंटरेस्टिंग। व्हाई डू यू थिंक दे मेड द डिस्टिंक्शन?
बिकॉज उनके हिसाब से जो मंगोल ट्रेडिशन है, आप मंगोल हो एथनिकली तो आपका ट्रेडिशन मंगोलाइट ट्रेडिशन होगा ना।
तो इस केस में रिलीजन एथनिसिटी और कल्चर पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता?
बिल्कुल नहीं। एंड दैट वॉज अ वेरी आइडियलिस्टिक केस, और इसीलिए लेटर ऑन बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, जैसे डॉक्टर लॉक जो कि गुरु हैं वोल्टायर के, उनका कंपेरिजन लोगों ने चंगेज़ खान से किया है इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी। और वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसे गिब्बन सेज, गिब्बन इज ऑल्सो इंग्लिश फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, सो उन्होंने भी प्रेज़ किया चंगेज़ खान को, और चंगेज़ खान को एक ऐसा रोल मॉडल देखते थे कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आप एक्सपेंशनिस्ट हैं बट यू आर सेक्युलर। सो टू द वर्ल्ड जो कि सेक्युलर हो चुका था, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके आइज में, सो चंगेज़ खान लुक लाइक ए अमेजिंग रोल मॉडल, राइट? सो तो वंस अपॉन अ टाइम द मंगोल एम्पायर वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड वन, लेकिन अब चंगेज़ खान इज़ इन द फिफ्थ जनरेशन, तैमूर इज़ इन द टेंथ जनरेशन ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, और तैमूर पर्शियनाइज्ड है एंड ही इज़ ऑलरेडी अ मुस्लिम, बिकॉज इस्लामिक कन्वर्जन हो चुका है मंगोल एम्पायर का।
ये कब होता है? एट व्हाट पॉइंट डज द मंगोल एम्पायर लूज इट्स पावर?
सो इट्स इन द ग्रैंडसन पीरियड ऑफ द चंगेज़ खान, जब कुबलई खान के हम लोग जाम बारे में जानते हैं, हिगलू खान की बात जानते हैं। तो एक एक और खान था, उसका नाम था बरके खान। सो बरके खान इज द फर्स्ट मंगोल टू गेट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम।
तो इससे पहले इनका रिलीजन क्या हुआ होगा?
मोस्ट प्रोबेबली
पेगन, एक तरह का पेगन,
एक पेगनिज्म था। लोग अलग तरह के ओपिनियन देते हैं, तेंगरी बुद्धिज्म, तो सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं कि वो शायद तांत्रिक बुद्धिज्म था जो कि टिबेटियन, बट वट एवर इट वॉज सर्टनली बिट ऑफ फॉर्म ऑफ अ पेगन ट्रेडिशन,
मोर ट्राइबल, मोर लाइक जो
एनिमिस्टिक भी हो सकता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट सर्टनली वॉज नॉट अब्राहमिक ऑफकोर्स। सो बरके खान गेट्स कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय अ सूफी, और उस कन्वर्शन के बाद उस समय हिगलू खान ने पूरे बगदाद का सैक कर दिया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि इस्लाम केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग, देयर वाज नो आर्क ऑफ इस्लाम, या फिर वो कभी डाउनफॉल में नहीं गया। लेकिन एक किस्सा है, जब स्पेन ने सारे चर्चेस को फिर से कन्वर्ट, दे वर कन्वर्टेड इनटू, ये पूरा इस्लामिक स्टेट बन चुका था स्पेन।
जी, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्पेन गया था 2023 के समर में, और मैंने वो वाले टाउन विजिट करे ग्रनाडा में, जहाँ पे मुस्लिम मूर्स बोलते थे, मूरिश इन्फ्लुएंस रह गया वहाँ
जी,
पे
जी।
तो वो एक ऐसी जगह थी कि आपको देखने में समझ नहीं आएगा अनलेस वहाँ पे तापाज और बियर नहीं होंगे कि वो आप मराकेश में हो या आप स्पेन में हो।
बिल्कुल, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्या किया उन लोगों ने कि सारे चर्चेस को जो मॉस में कन्वर्ट किया गया था, दे रिकन्वर्टेड ऑल बैक टू द चर्च, ऑल ऑफ देम, एंड इस फेनोमेनन को हम रिकॉन्कस्टा के नाम से जानते हैं। सो इट वॉज द लॉस ऑफ इस्लाम दैट वे, अगर हम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ इस्लाम, सो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इट्स अ लॉस ऑफ इस्लाम और द उस तरह से रिलेट करें। सिमिलरली इन द मंगोल्स हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज बगदाद वॉज अ सीट ऑफ द गोल्डन इस्लामिक एज, वहाँ पे सारे जो
कैलिफ उधर ही बैठे थे।
हाँ, सो कैलिफ वाज गॉन, हिगलू हैज टेकन केयर ऑफ हिम,
ओके,
एंड सो व्हेन बरके खान कम्स आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरा कज़न क्या कर रहा है, एंड दिस बरके खान इज सन ऑफ एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान जोची, सो ही सेज टू हिज फादर दैट इट इज़ रॉन्ग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो ओपिनियन दिया जाता है कि नो मंगोल हैज़ एवर क्रॉस्ड द सोर्ड अगेंस्ट अदर मंगोल, और एक जो मंगोल ओपिनियन है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ, सो एक मंगोल नेवर स्पिल्स द ब्लड ऑफ अदर मंगोल।
सो यू आर सेइंग दैट दे वर वेरी सिविलाइजेशनल?
या वेरी मच।
कैन वी ऑल्सो से दे वर, इवन दो दे हैड डिफरेंट एथनिसिटीज, दे वर अ लॉट लाइक अस इन सम वेज?
टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नॉट एंटायरली बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज द ज्योग्राफी डज अफेक्ट, and India is blessed to have the geography what it has, so that's why we are the way we are. So and this guy then comes back and says that, you know, I can't let it happen, how can, because Islam is a great religion, is the final word of God, and so we must help it out, and he goes on to the battle with this guy,
apne cousin se ladai kar
le, yes, and it's for the first time in our history when a Mongol crosses a sword against a Mongol, and the Mongol empire starts to, and that's when the Islamization of the Mongols has happened. Had this battle been won by Higlu Khan, world demography, world geopolitics would have been much more different. There won't have been Ottomans, there won't have been, so that is a very important battle which was fought between these two people. Aur uske baad jo Islamization hua Mongol empire ka, it was devastating. So the eyewitness record where क्रिश्चियंस के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, दे कांट कम आउटसाइड बिकॉज इफ दे आर सीन एनीथिंग कैन हैपन विद देम, वुमेन कांट वॉक ऑन द स्ट्रीट, एंड दीज आर आई विटनेस रिकॉर्ड। सो व्हेन द मंगोल्स इज गॉट इस्लामाइज, बिकॉज मंगोल्स देमसेल्स आर क्वाइट बार्बरिक इन द टर्म हाउ दे डील विद इट,
एंड स्लॉटर करते हैं सीधा,
यस, एंड व्हेन इट गॉट मर्ज्ड विद द आइडिया ऑफ इस्लाम, इट बिकेम इवन मोर,
सो बियॉन्ड जस्ट कि मेरे को अपना मंगोल एम्पायर एक्सपैंड करना है, नाउ यू आर ऑल्सो ऑन अ रिलीजियस मिशन,
यस,
यू हैव डबल द फर्वर,
या, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर वाज अ एक पीरियड था जब मंगोल्स वेयर मंगोल के लिए, इट वाज अ मंगोलाइट ब्रदरहुड, राइट, लेकिन व्हेन बरके खान कम्स इन द पिक्चर, इट इज बिकम उम्मा, ही इज फाइटिंग फ्रॉम नॉन मंगोल्स, राइट, बगदाद का शैक हुआ है, मंगोल एम्पायर का नहीं कुछ हो रहा है, बट he is perturbed by that, he usko he is not finding it right, and that's why he crosses the sword against his own brother, cousin rather.
So fir jab ye islamized hua mongol wo, to fir iske andar babar, at what point is babar,
so coming? So by then, and then Timur comes later on, and he is more persianized, he's wo persian language ka expert hai, culture tradition wo follow karta hai, and he has these two aspiration, ek aspiration hai ki usko caliph banna hai, khalifa, और दूसरा एस्पिरेशन उसको द खान भी बनना है।
द खान क्या होता है?
द खान जैसा चंगेज खान, बट द खान,
अच्छा,
द खान, राइट, सो बट उसमें से दोनों में से वो कोई भी चीज़ नहीं बन सकता है, क्योंकि कैलिफ बनने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न होना है, या तो कुछ उसे क्राइटेरिया है, और द खान नहीं बन सकता है वो, क्योंकि चंगेज खान के लिए से वो नहीं आता है। सो वो क्या करता है, ही मैरिज इन टू द हाउस ऑफ चंगेज खान, ओके, और वहाँ पे वो बन जाता है गुरखानिया, गुरखानिया, गुरखानिया का मतलब होता है सन इन लॉ इन दैट लैंग्वेज, और फिर वो जो, और वहाँ पे वो अपने एक पपेट को इस्टेब्लिश कर देता है, और खुद को टाइटल ले लेता है अमीर तैमूर का, तो तैमूर को हम अमीर तैमूर की तरह जानते हैं।
इसका लिटरली मतलब रिच होता है या अमीर कुछ और?
अमीर इज अ टाइटल।
अच्छा अच्छा,
सो लेटर ऑन इट बिकेम मीनिंग एज रिच बिकॉज दे वर द रिच पीपल।
अच्छा,
सो और वो एक माइथोलॉजी भी प्रोपगेट करता है दैट आई कम फ्रॉम दिस हाउस एंड सो। और उस समय क्या होता था, राजाओं में राजा या फिर जो रूलिंग क्लास उसमें बड़ा पावर होता था, जो भी माइथोलॉजी आप प्रोपगेट करोगे
जी, जैसे हम बात कर रहे थे बैठ के,
हाँ, सो ही वो माइथोलॉजी प्रोपगेट हो जाती है एंड ही फाउंड्स एन एम्पायर विच इज नोन एज तिमुरिड गुरखानिया। सो बाबर भी खुद को नस्ल तैमूरिया मानता था, मतलब तैमूर के लीनियस से, बिकॉज लीनियस भी वैसे ही चल रही
तो
है,
तो वो चंगेज खान की इन्फ्लुएंस से ज़्यादा गहरा और बड़ा बन गया।
यस, और मंगोल्स और इनफैक्ट बाबर नामा में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि तकरीबन 400 बार बाबर ने मंगोल शब्द का इस्तेमाल किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका ओपिनियन मंगोल्स या मुगल के लिए बहुत ही ख़राब है। ही इज़ अब्यूजिंग मुगल्स। वो ये बोलता है कि मुगल जहाँ जाते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पीस हो जाता है, दे आर अनसिविलाइज्ड एंड सो ऑन एंड ऑन। सो बाबर मुगल्स के लिए वेरी फॉन्ड ऑफ नहीं है। और आप देखिए, हम बोलते हैं कि बाबर ने एक मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था,
हम तो यही बोलते हैं, ये तो हम इसे कन्वेंशनल फैक्ट मानते हैं।
और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यूरोपियंस जो उस वक्त किताब लिख रहे थे, क्योंकि यूरोपियंस के लिए रेस ज़्यादा महत्वपूर्ण था, राइट, वो रेसिज्म बहुत स्ट्रांग था, तो उनके लिए हर कोई मंगोल था। हालांकि ये लोग खुद को तैमुरिड मान रहे हैं क्योंकि उनके लिए कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने हर किसी को मंगोल ही बुलाया। सो बाई, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनकी किताब को नहीं फॉलो किया, हम लोगों ने कॉलोनिस्ट की किताब को फॉलो किया, लिटरेचर को फॉलो किया टू नो अबाउट देम, तो हम भी उसको मंगोल या मुगल बुलाते रह गए, जो कि गलत है क्योंकि वो खुद को मंगोल या मुगल की तरह नहीं देखना चाहते थे। अब इन द टाइम ऑफ नाउ, जब आज के दिन कोई भी खुद को कुछ भी रिकग्नाइज करता है, राइट, इन द एडवेंट ऑफ वोकनेस, सो ये तो खुद को तिमुरिड रिकग्नाइज कर रहे थे, सो वी शुड स्टैंड बाई दैट।
तो ऐसे बाबर की स्थापना हुई, फिर इनका, इनके आपने पूरा इतिहास लिखा हुआ है, कैसे इनका जन्म हुआ, क्या क्या सारा सीन हुआ। अभी इंडिया के अंदर बाबर के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये शतरंज किंग कैसा था? क्योंकि देखो, इनकी बहुत सारी हिस्ट्री आउट ऑफ इंडिया बीती, तो एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं, बजाय इनके इनके स्टार्टिंग से जाने से पहले इनके इंडिया के फेल्ड कॉन्क्वेस्ट से सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं।
सो अब जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें तो लोगों को पहले क्लियर कर लेना चाहिए अपने दिमाग में। पहला ये कि लोगों के लिए वॉर और बैटल का मतलब ये होता है कि जिस तरह से फिल्मों में बैटल दिखाए जाते हैं,
जंग,
हाँ, बैटल वैसे नहीं होते थे क्योंकि इट वाज मोर अबाउट द मस्कुलिन पावर। आप कुछ देर लड़ोगे थक जाओगे, उतने लोग नहीं होते थे जितना दिखाते हैं, राइट। सो बहुत सारे जो फेलियर भी होते थे बैटल्स में या फिर जैसे इसके कॉन्क्वेस्ट में, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक फेलियर्स होते थे, हमेशा ये नहीं होता था कि किसी ने हरा के भेज दिया है। तो बाबर के जैसे ये इस पर्टिकुलर किताब में मैंने कहानी रोकी है उसके दूसरे फेल्ड अटेम्प्ट टू इंटर हिंदुस्तान से, राइट। सो हिंदुस्तान उसका आने का जो एक जो उस समय के हिसाब से जो मकसद नज़र आता है वो ये था कि वो अपने शत्रु शैबानी खान से भागता जा रहा है। जहाँ शैबानी खान आता है वहाँ बाबर नहीं रहता है, और होता ऐसा है जहाँ बाबर जाता है वहाँ शैबानी खान आता है, और ये टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहता है।
यानी कि इसको भगाया जा रहा था।
जी हाँ, और भगाया जा रहा था या रादर ये भागता था, मतलब आपके ऊपर तो आप उससे जंग लड़ सकते हो अगर चाहो तो। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बाबर की ये स्ट्रैटेजी थी, शायद उसको ये पता था कि शैबानी से शायद वो कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, तो इसको एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि बाबर ने बहुत सारे बैटल जीते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो हारता रहा था, बहुत सारे बैटल उसने जीते हैं, बहुत समरकंद को जिसने उसने जिस तरह से रिकॉन्कर किया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसके लाइफ के। लेकिन शैबानी खान वॉज ऑलवेज द मोस्ट टॉन्टिंग एनिमी वॉट ही एवर फेस्ड। एंड उसकी शैबानी की भी जो कहानी चलती है बहुत पुरानी है, वो उसके चाचा के आर्मी में वर्क करता था, और वहाँ पे उसने एक बैटल में, बैटल ऑफ सराय पुल, जहाँ पे उसने डिफेक्ट किया था, और ही रैन विथ हिज 3000 उज़्बेक्स, और उसके बाद से उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था कि मैं इन लोगों को जीने नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं पूरी जो बाबर की क्लैन है उसके पीछे वो पड़ा हुआ था हमेशा। और अब जब बाबरनामा पढ़ेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक शायबानी खान का एक अजीब सा दहशत है बाबर के मन में भी, एंड वो शायबानी खान हमेशा से वो रहता है। और बाबर तो दूसरी बात ये है कि बाबर को तैमूर के सपने को पूरा करना था, क्योंकि उसकी नानी हमेशा उसको चंगेज़ खान और तैमूर की कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन तैमूर की कहानी जो थी वो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती थी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसको तैमूर की कहानियाँ सुनाई
थी। उसके कहाँ सपना था, अलहिंद सपना था उनका।
जी 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 बिल्कुल अलहिंद, और तैमूर का उससे भी ज़्यादा सपना था, जो कि उनके बायोग्राफर याजदी बताते हैं, विच वॉज टू इस्लामाइज द होल वर्ल्ड। तो हाँ, ये याजदी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि तैमूर, क्योंकि तैमूर का मकसद क्यों है वो भी वो बताते हैं, जैसे हमने पहले वर्ल्ड व्यूज़ के बारे में बात की थी।
जी,
तो बायोग्राफर याजदी बता रहे हैं कि तैमूर को पूरे विश्व को इस्लामाइज इसलिए करना है क्योंकि दिस हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, इट्स वेरी क्लियर। सो और जब तैमूर को आप फर्दर पढ़ेंगे तो तैमूर जब भी बैटल में डील करता था विथ पॉलीथीस्ट या फिर ऐसे लोगों से जो नॉन मुस्लिम है, तो उसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन भी किताब से लेता था कि मुझे क्या करना है। सो ही वॉज वेरी डिवाउट इन टर्म्स ऑफ जो भी एक्शन वो कुछ लोगों के साथ लेने वाला है, वो रेफर कर रहा है किताब को टू डू हिज थिंग्स। और बाबर तैमूर के अनफिनिश एजेंडा को पूरा करना चाहता था। अनफिनिश एजेंडा कुछ और नहीं था बल्कि इस्लामाइजेशन ऑफ भारत था, अलहिंद को कैप्चर करके उसको इस्लामाइज करना था, जो कि फर्दर रेनफोर्स हो जाता है इस आइडिया से, क्योंकि एक सर्टन पार्ट ऑफ बाबरनामे में बाबर बताता है कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद के पीरियड से मैं तीसरा त्रामुंताना इन्वेडर हूँ, और पहले दो जो
त्रामुंताना,
हाँ त्रामुंताना एज इन जो उस पहाड़ी इलाकों से जो अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड से उस तरफ से जो आए, सो उसमें से जो दो थे वो थे गजनी और गोरी। तो जो खुद को गजनी और गोरी से कंपेयर कर रहा है और उसको उनके इतिहास के बारे में पूरा पता है, क्योंकि उसने अमीर खुसरो और ऐसे अलबरूनी वगैरह सबको पढ़ा है जो उनके इतिहासकार हैं।
कॉन्टेक्स्ट के लिए ये लोग माइंड मत करना, ये लोग रेगिस्तानों में ये सब कैसे एक्सेस कर लेते थे, क्योंकि ये क्या हम या फिर हमारा ये मान्यता है अभी कि करंट मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान या जिन जगहों पर इन्होंने रूल करा है वो जगहें बिल्कुल ही बंजर होती होंगी।
ये पॉइंट ज़्यादा करेक्ट है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि समरकंद में कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने पूरे फरगाना को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है पुस्तक में
जी,
और जहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है, जहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, जहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर्स की बात हो रही है, रिच फ्लोरा एंड फौना की बात हो रही है, नदियों की बात हो रही है, तो रेगिस्तान वो ऐसा रेगिस्तान ही जैसा हम इमेजिन करते हैं। इट वॉज़ वेल टू डू प्लेस, राइट, ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट एज समृद्ध एज भारतवर्ष बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल जो एडवांटेज है हमारे पास, लेकिन वो ऐसा नहीं था जैसे हम इमेजिन करना चाहते हैं। और जो पूरी बाबर का ख़ानदान है वो लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच था, दे वर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल। अकबर को हम अगर हटा दें तो हुमायूं भी काफ़ी पढ़े लिखे थे।
अकबर पढ़ा लिखा नहीं था?
नहीं,
क्या बात कर रहे हो आप
जी,
अकबर को तो बहुत बड़ा पेटर्न ऑफ आर्ट्स माना जाता था, पेटर्न ऑफ आर्ट्स कल्चर लिटरेचर पोइट्री,
बट नथिंग बिकॉज नथिंग मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन
अकबर सब मुगलों में सबसे ज्यादा अनपढ़ था, आप ये कह रहे हो?
हाँ,
तो हाउ इज दैट पॉसिबल?
इट हैपेंड, आई कांट हेल्प इट।
नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन हमें वी हैव बीन टॉट एल्सवेयर, वी हैव बीन टॉट
सो, और बिकॉज जैसे उमर शेख जो बाबर के पिता हैं वो भी बड़े विद्वान हैं, ही नोज लैंग्वेजेस, ही इज़ अ गुड पोएट। बाबर टेक्स इट एज अ हेरिटेज फ्रॉम हिज फादर, उसके बाद हुमायूं इज़ आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर।
इनकी बीवियों की बात करते हैं, क्योंकि आपने इसमें किताब में लिखा कि बाबर अपने आप को बहुत ज़्यादा शाय डिस्क्राइब करते हैं, शर्मीले किस्म के हैं, और चैप्टर का नाम है फर्स्ट मैरिज।
यस,
और आपने रेफरेंस कर रखा है कि आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह के
कंटेक्स्ट में,
किस तरह के कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने अगर फर्स्ट वाइफ बोला तो उनके क्या इरादे थे।
या बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ये खुद बता रहा है कि ये मेरी पहली, एंड बिकॉज ये डायरी राइटिंग है, दिस इज़ नॉट अ आफ्टर थॉट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑटोबायोग्राफी बट इट्स अ रैदर एवरीडे डायरी नोटिंग जो वो कर रहे थे। तो जब उनके पहली शादी हुई है निकाह हुआ है, और जब वो ये बता रहे कि ये मेरी पहली शादी है या फिर पहला निकाह है, इसका मतलब ये जो 17 साल का बाबर है उसको पता है कि आगे उसकी और शादियां होने वाली हैं. ही इज़ वेरी क्लियर एंड इट मीन्स दैट इट इज़ क्वाइट अ कॉमन थिंग टू मैरी मल्टीपल. सो अब कई लोग इसका काउंटर ये देंगे कि अब भारत में मल्टीपल, सो आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं वो पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं है, हम उस रीजन की बात कर रहे हैं और उस रीजन में मल्टीपल मैरिजेज वेयर वेरी कॉमन. और जब ये जो बाबर का जो पहला मैरिज है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज है टू अंडरस्टैंड बाबर एज अ पर्सन, क्योंकि उस वक्त पे बाबर ने एक बाबरी किस्म के बाबरी नाम के एक शख्स का
जी बाबर की बाइसेक्सुअलिटी
जी, एंड मैंने बहुत ही क्लियरली असर्ट, आई कांट से असर्ट किया, बट आई हैव मेड एन ओपिनियन दैट परहैज बाबर वॉज बाइसेक्सुअल, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि जहाँ तक वो
मेरे पास, इफ यू वांट आई कैन रीड इट, आई कैन रीड द, आई हैव द, सो आई एम मैडन एंड अफ्लिक्टेड माई सेल्फ फॉर अ बॉय इन द कैंप बाजार, हिज वेरी नेम बाबरी फिटिंग इन, अप टिल देन आई हैड नो इंक्लिनेशन फॉर एनीवन इन डीड ऑफ लव एंड डिजायर आइदर बाय हेयर्स और एक्सपीरियंस.
या सो अब इससे आपको एक बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पैशन फॉर दैट बॉय, और वो इसको इस दौर में लिख रहा है जब उसकी पहली शादी हुई है, और वो ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि मुझे, आई एम नॉट दैट अट्रैक्टेड टू माई फर्स्ट वाइफ, ही इज राइटिंग इट, वो बता रहा है कि मैं अट्रैक्टेड नहीं हूँ. इट मीन्स दैट यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेट कर रहा है इस चीज़ का अबाउट अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन. सो ही इज अट्रैक्टेड टू दिस बॉय क्योंकि उसको वो बुलाता भी है अपने पास. He spends time looking at him. At times, his eyes will not meet with Babri. Babri से उसके आँख नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब उसके आँख मिलता है तो he feels shyness there too. So he is always talking it in terms of some kind of a love affair.
इसकी वजह से आपने, I don't know if you've seen, पाकिस्तान में आज भी एक प्रथा है, अजीब सी प्रथा है, अफगानिस्तान में भी है, जहाँ वो खूबसूरत नौजवान लड़कों को अपने साथ रखते हैं, खासकर बुढ़े आदमी
जी,
अपने मतलब सेक्सुअल यू नो प्रेजर सेटिस्फाई करने के लिए. और अब इंस्टाग्राम पे मैं इसके बाद आपको क्लिप दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे भी वीडियोस बनना शुरू कर गए हैं जहाँ पे एक बंदा है जो पेट्रोल भरता है बाइकों में ना, तो वो वीडियो बनाता है जिसके अंदर ना खूबसूरत जवान लड़के आते हैं बाइक पे बैठते हैं ऐसे आगे, उनमें पेट्रोल भर रहा होता है और उनको निर्लज निगाहों से देख रहा होता है, उसके पीछे गाने चल रहे होते हैं. तो मेरे को लगा कि ये कुछ अलग तरह की प्रथा है जो शायद ग्रीक्स में भी थी मेरे ख्याल से.
यस
बस yes. इसमें मैं यही टिप्पणी थी.
नहीं परहैप्स जो अफगानिस्तान में जो हम देख रहे हैं या पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रैदर जब बोला जाए तो मे बी दैट शायद वहीं से आ रहा है. इट वाज वेरी मच कॉमन क्योंकि बाबर को भी जो फैसिनेशन हुआ ये काबुल में जाके हुआ है.
अच्छा इंटरेस्टिंग.
सो एंड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जब समरकंद में रिबेल हो जाता है. वो रिबेल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाबर का एक कज़न है ही इज़ फाउंड टू बी सीइंग द सन ऑफ अ वेरी बिग ऑफिशियल. सो पीपल आर नॉट समरकंदीज और तरखानीज जो हैं, दो तरह के लोग हैं वहाँ पे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जो युवराज है या फिर जो जो रॉयल है वो कैसे दे आर इंडल्जिंग इन टू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द बॉयज. सो आई थिंक जो एलीट था उस पीरियड का दे वर वेरी मच इन टू द बाइसेक्सुअल एक्ट्स, इट वॉज वेरी मच देयर, बट जो जनरल सोसाइटी थी दे वर वेरी मच अपोज टू इट. और शायद इसी वजह से उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन एलीट्स ने उस चीज़ों को काफ़ी क्लियरली लिखा है. जैसे इस रिवेल की भी जो बात हुई है ये बाबर ने खुद किया है कि एक रिवेल हुआ इस कारण से हुआ, ये वो बताता है.
आपने इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है एट सम पॉइंट यू से कि आप लेट हो रहे हो क्या?
नहीं, दैट्स फाइन.
अच्छा ठीक है. व्हाट टाइम डू यू वांट टू एंड? वी कैन टॉक. अब आपका नेक्स्ट वाला वो कब है?
मैं जस्ट वही चेक कर रहा हूँ.
नो प्रॉब्लम. सॉरी वी रैन ओवरबोर्ड.
नहीं, आई थिंक दिस इज गोइंग वेल.
हाँ, तभी दैट्स व्हाई. Thank you.
विल वी बी एबल टू रैप इट अप इन 20 मिनट्स?
या आराम से इजी। आपको सेक्टर 10 जाना है ना इसके बाद?
पास में ही है ना वो।
मतलब इट विल टेक यू 10 मिनट्स फ्रॉम, आई कैन ड्रॉप यू ऑफ देयर, नो प्रॉब्लम, मैं आपको छोड़ दूंगा उधर।
नहीं नहीं, आई हैव गॉट अ कैब, आई हैव केप्ट इट रेंटेड।
अच्छा, ब्लू स्मार्ट ले रखी है आपने?
पता नहीं, ओला के लिए है मैंने।
अच्छा, ओला के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, विल रैप इट अप इन 10 ओनली, नो प्रॉब्लम। यू कैन हैव सम ऑफ द फूड एज वेल, क्या आपको फिर सीधा वहाँ जाना पड़ेगा?
देख लेते हैं, मैंने मैसेज कर दिया।
अच्छा ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम।
या
सो एक आपने बड़ी अच्छी इसमें बात लिखी हुई थी, एंड आई हैव नेवर, नाउ दैट आई एम रीडिंग टू मेनी हिस्ट्री बुक्स नाउ डेज, बिकॉज ये रीजन ऐसा है कि डेजर्ट है, डेजर्ट में ओएसिस, मिराज, ठीक है, और ये मंगोल कल्चर भी दूसरा है। यू सेड एस्ट्रोलॉजिकल वुमेन, क्या आपने हल्का सा एक लाइन लिखी हुई है, मैं आई हैवन कम अक्रॉस द मेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल वुमेन्स टू मच, बट इट सीम्स टू मी दैट मैनी लीडर्स इन अ कंट्री, मैनी लीडर्स फ्रॉम दैट टाइम लुक टू द टू नेचर एंड टू सूथसेयर्स एंड प्रीस्ट्स कि क्या सही इशारा है मेरा जंग करने का, उसकी कुछ साइड पता लगी बाबरनामा में उस चीज़ की?
उतना डिटेल उसने नहीं दिया है बाबरनामा में, लेकिन आई एलैबोरेटेड, नॉट एलैबोरेटेड बट आई हिंटेड अबाउट इट, क्योंकि मुझे एल्केमिस्ट की कहानी याद आ गई। एल्केमिस्ट में भी वो कहानी ऐसी है जहाँ पे ओमेंस की बात हो रही है, और डेजर्ट्स, पीपल ऑफ डेजर्ट बिलीव अ लॉट इन द ओमेंस, बिकॉज डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके आसपास कुछ भी नहीं रहता है, यू आर जस्ट लॉस्ट वे यू आर, एंड देन यू रिलाई ऑन द स्टार्स टू रीड द डायरेक्शन, यू रिलाई ऑन द बर्ड्स टू टेल यू सर्टन स्टोरीज, एंड एट टाइम्स दीज काइंड ऑफ बिलीव जो ओमेंस वगैरह के होते हैं वो भी आपको, इट कीप्स यू गोइंग विद द फ्लो एट टाइम्स, सो दैट वॉज वेरी मच इन वोक, एंड दैट इज़ वाई बाबर ने एक युद्ध के बारे में जब चर्चा की है तो वहाँ पर वो बताता है कि शायद मेरा एस्ट्रोलॉजिकल ओमेंस वर नॉट राइट, शायद गलती हो गई, और ही इज़ अ सुन्नी मुस्लिम एंड ही डजेंट, लेकिन उनकी जो नोशन है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के विच बाबर इज़ टॉकिंग अबाउट, शायद वो अभी के जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें वो बिल्कुल मैच नहीं करेगी, बिकॉज दे विल नॉट अग्री टू इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दे विल कॉल इट आउट एज सुपरस्टिशियस। सो आई पॉइंटेड आउट फॉर वन रीज़न, दैट एक ये था कि उस समय के पीरियड को दिखा करके एक मैं एक ये पोर्ट्रेल दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मेनी पीपल ट्राई टू आइडियलाइज बाबर, मेनी पीपल ट्राई टू आइडियलाइज औरंगजेब इवन, सरप्राइजिंगली। सो ऐसे में आप जिनको अपना हीरो मानना चाह रहे हैं, आप क्या उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं? अब जैसे ऑफकोर्स ये बाबर की ज़िंदगी का हिस्सा है, वेदर ही वॉज बाई सेक्शुअल और नॉट, और बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी है तो उसको मैं लिखूंगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, ये कुछ लोगों के लिए एक सवाल भी उढ़ेर करके डाल रहा है, क्या आप उनके इस व्यू से अग्री करते हो अगर आप उनको आइडियलाइज कर रहे हो, या फिर आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था?
बेसिकली बात तो यही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सबको एक नाम मिला हुआ है बाबर, उससे जुड़ने के लिए बस।
बाबर वॉज हाईली अल्कोहलिक टू इन अ पर्टिकुलर पीरियड,
ही वॉज फोर्स टू ड्रिंक इज व्हाट यू सेड,
या बट देन इट
फिर शुरू हो गई,
या शुरू हो गई, एंड ही इज टॉकिंग दैट इट्स अ सिन एंड ही इज वेरी रिग्रेटफुल ऑफ इट एज वेल,
फिर भी करे जा रहा है।
हाँ,
सो पर मैं समझ सकता हूँ, लीडर विद दैट मच हाई स्ट्रेस, उस टाइम पे उसको एक फॉरबिडन चीज मिल गई, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑल्सो, वेरी हाई परफॉर्मर्स आर ऑल्सो ऑल हाई फंक्शनिंग एल्कोहलिक्स, सो मॉडर्न डे में
या
बाबर इज जस्ट वन ऑफ द मैनी मैन। बट आप मेरे को ये बताओ, जो इसके फेल कॉन्क्वेस्ट है इंडिया के, इनको रोका कैसे गया? बिकॉज दैट ऑल्सो इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर सो कॉल्ड बास्टर्डली मुगल एम्पायर,
टिमुरिड
एम्पायर।
सो इसके जो इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स थे, दे फेल्ड स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज पहला जो अटेम्प्ट था वो फेल हुआ बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, ठंड बढ़ने लगी,
ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए किधर से आ रहे थे,
दे वर यूज्ड टू द कोल्ड बिकॉज समरकंद एंड ऑल दीज पीपल आर यूज्ड टू इट, बट सडनली व्हेन यू क्रॉस द हिंदू कुश एंड ऑल, ये दिस इज मच मोर डिफरेंट देन द कोल्ड यू आर यूज्ड टू। सो क्लाइमेट एडवर्सरीज आ गए थे, इट वॉज नॉट सो ईजी टू कीप अप विद देम, और कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज की भी अभाव होते जा रही थी, बिकॉज इन दैट पीरियड आप इतने अच्छे से मेटिकुलसली पूरे कैंपेन को प्लान नहीं कर सकते थे, जैसे अभी भी लोग मिलिट्री कैंपेज जो उस समय के थे उसको अभी के स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं, फिर हम इतने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हम प्लान कर पाते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें बीच में आती थी, आपके घोड़े मरने लगते थे, बहुत कुछ होता था
जी।
कई बार यू हैव टू स्लॉटर योर हॉर्सेज एंड ईट
टू फीड, कई बार आप बिल्कुल राशन वगैरह खत्म हो सकते हैं।
यस, हाँ, सो सिचुएशंस बहुत अलग रहते थे। अब जब रास्ता भटक गए हो, जो आपको गाइड कर रहा है वो सही गाइड कर रहा है कि, जैसे बाबर के साथ एक बार होता है, ही गेट स्टक समवेयर। सो इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस थे, मिल करके पहले दो कैंपेन्स को फेल करवाए, लेकिन बाबर का कैंपेन फर्दर कंटिन्यू होता रहता है, तीसरा चौथा पांचवें बार में फाइनली ही डिफीट।
पांच बार वो कोशिश करता है इंडिया,
ही नेवर,
बड़ा ही परसिस्टेंट इंसान है ये, तो मैंने देखा है।
उसका एक कारण भी उसने बताया, तैमूर का तो मैंने कारण बताया, वो तो मकसद है
जी,
और अपने आप को वो गोरी और गजनी से रिलेट कर, गजनी और गोरी से रिलेट कर रहा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो बताता है, जैसे बोलते हैं कि बाबर तो हमारा ही हो गया, हमको समृद्ध बनाने के लिए हमको आर्किटेक्चर दे गया, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो बताता है कि भारत में बड़े आसानी से पैसे मिल जाते हैं, यानी कि सोने चांदी, और पूरा अकाउंट दे रहा है कहाँ से उसको कितने सोने चांदी मिलते हैं, राइट। फिर वो बताता है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े आसानी से मेहनत कर लेते हैं, आर्टिसंस बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। बाबर ये बताता है कि जब जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है समरकंद का, वो है तैमूर का मसोलियम, जो कि ताजमहल से छोटा है, और ताजमहल से बड़े हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, और वो वहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसको बनाने के लिए भी बाबर ने ही खुद बताया है आर्टिजन्स भारत से लाने पड़े थे
तैमूर का मसोलियम बनाने के लिए
जी।
यानी कि उसका तो ये था कि भाई अच्छी जगह है, इस पर प्लंडरिंग वंडरिंग चालू करेंगे अपना, क्योंकि कुछ तो हमें क्या करना है। कहाँ वो वैसे भी दोस्त, लाइक यू सेड, वो एरियाज फर्टाइल थे जहाँ से ये आते थे, पर इतने नहीं थे,
बिल्कुल,
ये तो खजाना था
बिल्कुल। और बाबर को चेसबोर्ड किंग या शतरंज का बादशाह इसलिए बुलाया गया, ये टाइटल उसको फरिश्ता ने दिया था, फरिश्ता एक मुस्लिम स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे 16th century के, और उनके हिसाब से बाबर जैसे जो शतरंज खेलते हैं या चेस खेलते हैं, उनको पता होगा एक जो राजा होता है वो सिर्फ एक घर ही चल सकता है, चाहे जैसे भी, और एक बार राजा गया तो गेम ओवर, चेकमेट हो गया। तो और बाबर की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी थी, उसकी एक किंगडम कभी फिक्स नहीं थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, छोटे छोटे लीप्स वो लेता रहता था, बट ही कुड नेवर बिकम द सक्सेसफुल। एंड ही वो इंसान नहीं था जो विक्ट्री क्रिएट करता था, जैसे उसके जो विक्ट्री के हीरोज़ भी थे, उसने अपने हीरोज़ के बारे में बात की, ही वॉज नेवर अ वॉर विक्ट्री, वो कभी वॉर हीरो नहीं था, वो लीड करता था, वो बैकअप दे रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, बट ही इज़ नॉट द वन जिसने एक्चुअली जीत दिलाई है। उसके लिए मरने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका वो
जिक्र, सही, स्मार्ट,
हाँ, स्मार्ट
गाय, वो ऐसा नहीं था कि आर्मी को फ्रंट से लीड कर रहा है।
या सो उसको इसीलिए शतरंज का बादशाह का टाइटल दिया गया था। अब इसको कोई डेरोगेटरी में भी मिल सकता है किसी को बहुत अच्छे में, बट शतरंज का बादशाह कहने का कारण ये था कि वो कहीं पे भी स्टेबलाइज नहीं हो पाता था, छोटे लीप्स लेता था, एंड ही केप्ट ऑन लूजिंग टेरिटरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन फिर भी वो खड़ा है होल्ड किए हुए अपने प्यादाओं के साथ, बिकॉज वो हमेशा कुछ लोगों से सराउंडेड है, कुछ उसके बहुत ही खास लोग हैं जो हमेशा उसके साथ चलते हैं। सो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक चेसबोर्ड किंग की तरह ही आगे बढ़ रही है।
मैंने इस तरह से कभी कंटेक्चुलाइज नहीं करा उसको कि वो आपने बुलाया, कभी समरकंद मिलता है फिर उसे लूट लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कभी काबुल मिलता है फिर लूट लेते हैं, फिर भारत, मतलब ही वॉज नॉट समवन हु कुड पीसफुली एंजॉय हिज रेन।
यस,
20 साल राज करा मैंने, 10 साल राज करा, 5-15 साल राज करा, जैसे उसके बाकी जैसे सक्सेसर आए उन्होंने तो फिर भारत पर आराम से राज करा
जी,
एक जगह रह के राज करा
जी। एंड सो बाबर को अगर देखा जाए लार्जली, तो बाबर सी, बाबर हैड 3-4 पर्पस वेरी क्लियर। 1, टू इस्लामाइज द नॉट इफ नॉट वर्ल्ड, जो कि तैमूर का पर्पस,
लेट्स स्टार्ट विद इंडिया,
इट वॉज वेरी क्लियर, वो अपने आप को गजनी गोरी के लाइन में देखता था। थर्ड थिंग, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, आई विल नॉट डिनाई इट। फोर्थ वॉज दैट ही वॉज सर्टनली इन टू द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरिंग इन टू द थिंग्स जो बाकी लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो करना चाहता था, वेदर द वे ही इंगेज विद बाबरी। और बाबरी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, क्योंकि बाबरी स्ट्रक्चर की बात होती है
जी।
सो उसको तो मैं बहुत डिटेल में डील करने वाला हूँ सिक्वेल में, दैट एग्जैक्टली वॉट हैड हैपेंड, क्योंकि बाबरी इज़ नॉट रिलेटेड टू, बाबरी इज़ नॉट बाबर, बाबरी एक दूसरा शख्स है बाबरनामा में,
जो बाबरी मस्जिद जिसको,
अब वो क्या है वो मैं सिक्वल में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो इतना प्लेन फैक्ट नहीं है जैसा लोग देखना चाह रहे हैं, वो थोड़ा नुआंस्ड है।
ओके
और हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसे हैं जो अगर लोगों के सामने आएंगे सो दे विल बी बैफल्ड कि अरे सत्य तो ऐसे है, ऐसे नहीं था, हम तो इसको ऐसे देख रहे थे।
चलिए आपकी सीक्वल की वेट करेंगे, और अभी के लिए लोग आपकी इस पुस्तक को कहाँ खरीद सकते हैं?
ये पुस्तक हर जगह अवेलेबल है, जहाँ पे भी किताब मिलती है, चाहे वो बुक स्टोर्स हो, अमेजोन, पढ़ेगा इंडिया, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर। सो बुक कैन बी परचेज फ्रॉम ऑल द लीडिंग बुक स्टोर्स, इफ नॉट ऑल द बुक स्टोर्स।
सो किताब का नाम मैं दोबारा दोहरा देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, बाबर द चेसबोर्ड किंग बाय आभास मल दहियार। सही प्रोनाउंस करा है? मल दहियार। ठीक करा है, हाँ ठीक है। आभास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इतना अपना, पहली बात तो फ्लाइट लेके यहाँ तक आने के लिए, और फिर NCR रीजन में आने के लिए हमारे पास, और फिर ना कि केवल बाबर के बारे में पर भिन्न भिन्न प्रकार की और डिस्कशंस करने के लिए मेरे साथ, जिसके अंदर आपने पर्टिकुलरली जो स्टार्टिंग में बातें बोली उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट करा मेरी आपकी भी लाइफ की जर्नी को समझने के लिए। बाकी लोग आपका काम, आपकी ट्वीट्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल क्या है आपका?
आभास 24।
ठीक है, थैंक यू, आई रियली फील इल्यूमिनेटेड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू नॉट जस्ट यू नो फिनिशिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक वेर ही विद द टू फेल्ड कॉन्क्वेस्ट, बट ऑल्सो वेट फॉर द सीक्वल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
थैंक यू, माई प्लेजर, इट वॉज प्लेजर टू बी हेयर इन द शो।